श्रीमद् भागवत जिसकी प्रतीक्षा महाराज परीक्षित 3.5 दिन से कर रहे थे, तो 3.5 दिन के पश्चात उस कथा में श्रीमद् भागवत का 10वां स्कंद सुनाया गया। और कथा के आरंभ में महाराज परीक्षित सुखदेव गोस्वामी के समक्ष अपने हृदय के भाव व्यक्त करते हुए कहते हैं, अथान्यतपि कृष्णस्य तोकाचरितम् अद्भुतम् मानुषम् लोकम् आसाद्य तत् जातिम् अनुरुन्धत। कि भगवान की अन्य अवतारों में लीलाओं की तुलना में जो भगवान श्री कृष्ण ने मानव समाज में बाल लीलाएं की, वो विशेष रूप से बड़ी आकर्षक हैं। और इसलिए हम चाहते हैं कि इन लीलाओं का हम श्रवण करें। तो इसलिए आरंभ में ये वाला श्लोक हम लोग बोलते हैं, 10वें स्कंद के 1वें अध्याय का 4वां श्लोक। निवृत्त तर्षै रूपगीयमाना भवौ सदा श्रोत्र मनोभिरामा क उत्तम श्लोक गुणानुवादा पुमान विरज्येत बिना पशुघ्ना। भगवान श्री कृष्ण की इन लीलाओं का वर्णन सबसे पहले परंपरा में हो जाता है और 3 श्रेणी के लोगों का यहां वर्णन है। हरि कथा किन लोगों को आकर्षक लगती है? निवृत्त तर्षे, जो पूरे शुद्ध है, तृष्णाओं से मुक्त, इच्छाओं से विहीन। भवौषधात, दूसरे जो साधक हैं उनके लिए ये कृष्ण कथा औषधि की भांति उनके बीमारी को दूर करती है। तीसरे, जो भौतिकवादी लोग, हरि बोल हरि बोल हरि बोल मुरली, श्रोत्र मनोभिरामात का अर्थ है भौतिकवादी लोगों का मन, जिनका दूर दूर तक भगवान श्री कृष्ण के साथ कोई संबंध नहीं, श्री कृष्ण में उनकी कोई श्रद्धा नहीं, लेकिन फिर भी वो लोग कृष्ण कथा सुनना पसंद करते हैं। क्यों? श्रोत्र मनोभिरामात, उनको लगता है कि कृष्ण कथा में कितना मनोरंजन है। आज मनोरंजन के नाम पर अधिकतर 3 मुख्य विषय हैं, एक है प्रेम, दूसरा है युद्ध, तीसरा है राजनीति, और ये तीनों भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं में भर भर के। तो इसलिए लोग आज भी भले कृष्ण के साथ कोई उनका संबंध नहीं, भक्त नहीं, लेकिन वो कृष्ण के इन लीलाओं को सुनना और देखना अवश्य पसंद करते हैं। और इसलिए जब टेलीविजन इंडस्ट्री के माध्यम से टेलीविजन का आविष्कार भारत में हुआ, तो उस समय देखा गया कि लोग इस टेलीविजन को भारत में लाने के पश्चात भी लोग पूरी तरह आसक्त नहीं हो रहे थे टेलीविजन के प्रति। तो कई प्रोड्यूसरों ने मिलकर यह षड्यंत्र निकाला कि चलो हम लोग रामायण बनाते हैं। तो सबसे पहले रामायण आया, उसके बाद महाभारत आया, तब जाकर भारत में लोग टेलीविजन को कुछ गंभीरतापूर्वक स्वीकार करने लगे। और उस समय जब ये टीवी पर आता था तो लगता था कि पूरे शहर में कर्फ्यू लग गया है, लोग पूरा तन मन धन के साथ बैठकर इसका दर्शन करते थे। तो इसलिए एक कोई सज्जन मुझे कह रहे थे, कृष्ण के इतने गर्लफ्रेंड क्यों हैं? मैंने कहा, ये तुम्हारा मेन प्रॉब्लम है क्या? मैंने कहा, तुम्हारा मेन प्रॉब्लम है तुम्हारा एक भी क्यों नहीं है। तो इसलिए भगवान श्री कृष्ण के इन लीलाओं को बड़े बड़े मायावादी गण, जो कि भगवान को निर्विशेष ब्रह्म मानते हैं, वो भी श्रीमद् भागवत की कथा सुनाने से अपने आप को रोक नहीं पाते, क्योंकि श्रोत्र मनोभिरामात। आगे यहां पर वर्णन आता है कि भगवान श्री कृष्ण के आविर्भाव की कथा आरंभ होती है। पृथ्वी देवी के ऊपर बहुत अत्याचार मचा, हर प्रकार से बड़े बड़े राक्षस असुरगण हावी हो गए। पृथ्वी देवी गो माता का रूप धारण करके ब्रह्मा जी के पास गई। ब्रह्मा जी भी बड़े दुखी हुए उनकी इस दुर्दशा को सुनकर, और ब्रह्मा जी सभी देवताओं को लेकर जगाम सत्री नयनस तीरम क्षीर पयोनिधे, उन्होंने शिव जी और सभी देवताओं को एकत्रित करके भगवान श्री विष्णु के पास चले गए। तो भगवान श्री विष्णु के पास 33 कोटि देवता और ब्रह्मा जी क्यों गए? आचार्यगण बताते हैं कि ब्रह्मा जी सबसे पहले बड़े ही परिपक्व बुद्धि वाले लीडर थे, इस बात में भेद कर सकते थे कि कौन समस्याओं का समाधान मैं स्वयं कर सकता हूं और कौन से समस्या का समाधान करने मुझे श्री कृष्ण और भगवान श्री विष्णु की सहायता लगेगी। तो अगर आपको लगता है कि मैं जीवन की हर समस्या स्वयं समाधान कर लूं, तो बड़ी बड़ी समस्या और बढ़ेगी। इसलिए विवेक शक्ति की आवश्यकता है कि किस परिस्थिति में हम किस प्रकार उस समस्या से बच सकें और उस समस्या के विषय में हमसे श्रेष्ठ किसी अधिकारी को इसकी सूचना दें। वी शुड नो वेन टू एस्केलेट द मैटर। और तो ब्रह्मा जी इस प्रकार समझ गए कि हाँ, मैं स्वयं इस कार्य को नहीं सिद्ध कर सकता, मैं ब्रह्मा हूं, संपूर्ण ब्रह्मांड का निर्माण मैंने किया है, लेकिन फिर भी यहां पर जो पृथ्वी देवी की समस्या है उसका समाधान मेरे पास नहीं है। इसलिए लीडर के कई गुणों में एक बड़ा प्रमुख गुण है नम्रता। नम्रता का अर्थ यह है कि कोई सफलतापूर्वक समस्या का समाधान करने पर सोचना कि मैं तो केवल निमित्त था और भगवान के हाथ में निमित्त हूं और मेरा अपना कोई श्रेय नहीं, इस कार्य को सफल करने में कई लोगों का योगदान रहा, ये एक प्रकार की नम्रता है। ये नहीं सोचना चाहिए कि हम ही उसको कर लिए, है कि नहीं? अगर आप अगर किसी को लगता है एक प्रभुपाद की शिष्या प्रभुपाद जी के लिए कुकिंग कर रही थी, प्रभुपाद जी कहीं दूसरे शहर में जा रहे थे और वो समोसे बना बना के प्रभुपाद के लिए लंच पैक बांध रही थी, और प्रभुपाद वहां आए और समोसे को उठाकर खाने लगे, लंच पैक से उठा के, और जितना वो लंच पैक में डाल रही है उसके पहले प्रभुपाद उठा लिए। तो देखते ही देखते लगभग जितने उन्होंने कुकिंग किए थे सब प्रभुपाद वहीं खत्म कर गए। तो उन माता जी को लगा कि प्रभुपाद जी को इतना पसंद आया मेरा कुकिंग, तो उन्होंने प्रभुपाद को पूछा कि प्रभुपाद जी आपके फेवरेट कुक कौन है? प्रभुपाद ने कहा मैं खुद। तो प्रभुपाद जी ने उनको ऑन द स्पॉट नम्र कर दिया। तो इसलिए कभी किसी को लगे कि हाँ, हम ये इतना महान कार्य किए हैं, ये इसका श्रेय हमको जाता है, तो ये विनम्रता के सिद्धांत के विपरीत है। दूसरा, हम इस समस्या का समाधान नहीं कर सकते। हमने कई कई समस्याओं का समाधान किया है, लेकिन ये जो वर्तमान में समस्या है ये हमारे बस के परे है। इस बात को स्वीकार करना भी एक नम्रता है। दिस इज बियॉन्ड माई कैपेसिटी, हम इस परिस्थिति को नहीं संभाल पाए। तो ये दो प्रकार के नम्रताओं को अपने जीवन में उतारना बड़ा आवश्यक है। तो ब्रह्मा जी यहां पर बड़े नम्र थे, स्वीकार कर लिए हम इसको नहीं संभाल सकते। ये भगवान के पास गए हैं तो शिव जी को साथ में लेके क्यों गए? जगाम स त्रि नयनस, शिव जी भी साथ में गए। तो यहां पर प्रश्न पूछा जाता है शिव जी क्यों साथ में गए? तो इसमें उत्तर देते हैं आचार्यगण कि ब्रह्मा जी विचार कर रहे थे कि अगर भगवान को जाके बोले कि प्रभो थोड़ा आइए, अवतार लीजिए और असुरों का संहार कीजिए, तो हो सकता है इसमें संभावना ये थी कि भगवान बोले कि भाई मैं तो रास लीला करने में बहुत मग्न हूं, मैं बहुत बिजी हूं और इस प्रकार के बीभत्स कार्य के लिए मुझे प्रेरित मत करो, मैं आनंद के मूड में हूं। और कहां तुम मारपीट की बात कर रहे हो, तो अब नहीं, भविष्य में जब मूड बदलेगा तब देखेंगे। अगर भगवान इस प्रकार उत्तर दें तो ब्रह्मा जी कहे चलो शिव जी को साथ में लेके चलो, और हम बोल देंगे प्रभु अगर आप बिजी हो और आपके पास समय नहीं, कम से कम आप संकेत कर दो और इनको आदेश दे दो, शिव जी को समय से पहले अपना तीसरा नेत्र खोल देंगे, काम हो जाएगा अपना। खुद स्वयं नहीं कर सकते तो कम से कम डेलीगेट तो कर दीजिए इनको, ये तो क्षण भर में ब्रह्मांड का विनाश कर सकते हैं, लेकिन बस आपके संकेत की आवश्यकता है। इसलिए जगाम सत्री नयनस, तीन नयन वाले शिव जी को भी लेकर गए। तीरम क्षीर पयोनिधे, क्षीर के सागर के तट पर जाकर प्रार्थना कर रहे हैं। तो इसलिए कहा गया है कि ब्रह्मा जी केवल एकांत में बैठकर पृथ्वी देवी के ही बगल में आंखें मूंद कर भगवान को स्मरण कर सकते थे, लेकिन सब लोगों को लेकर उनको क्षीर सागर तक जाने की क्या आवश्यकता थी। तो ब्रह्मा जी ये उदाहरण देना चाहते हैं कि भगवान सर्वत्र विद्यमान है, लेकिन सर्वत्र विद्यमान होने वाले भगवान को भी अगर पुकारना हो तो उनका अपना घर है जिसको कहते हैं मंदिर। तो मंदिर तक जाने का आपको कष्ट अवश्य करना चाहिए भगवान से प्रार्थना करने, है कि नहीं। तो इसलिए मंदिर बनाए गए हैं जिससे कि हम लोग वहां पर जाएं, माथा टेकें और भगवान से प्रार्थना करें उनके घर में। अगर कोई समस्या होती है सरकार से और निवेदन करना होता है सरकारी अफसर को, मंत्री को इत्यादि को, उनको थोड़ी हम घर पे बुलाते हैं, हम लोग थोड़ी संकेत करते आ जाइए थोड़ा, प्रधानमंत्री जी हमारे घर पर आ जाइए, नहीं, अपॉइंटमेंट लेके वहां जाना पड़ता है। ये अलग बात है कि भगवान हम सभी के घरों में भी प्रकट हो जाते हैं विग्रह के रूप में, लेकिन ये एक शिष्टाचार है कि जो निम्न स्तर का व्यक्ति है वो उच्च स्तर के व्यक्ति को सम्मान करता हुआ उनके निवास स्थान पर जाए और उनके टर्म्स और कंडीशंस, उनके बताए हुए नियमों के अनुसार उनके सामने रवैया अपनाए। इसलिए प्रभुपाद जी ने इस्कॉन के मंदिरों की स्थापना की। किसी ने प्रभुपाद जी से प्रश्न पूछा, इतने सारे प्राचीन मंदिर भारत में हैं, उनको आप लोग इस्कॉन वाले संभालते क्यों नहीं, उसको छोड़कर नया नया मंदिर क्यों बनाते हो। प्रभुपाद ने कहा, ये तुम्हारे बगल में जो महिला है वो कौन है, वो बोली मेरी पत्नी है। बोलो क्यों चाहिए तुमको, वो बोले जिससे कि मैं अपने बच्चे पैदा कर सकूं। प्रभुपाद ने संकेत किया, देखो वहां रास्ते पे कितने बच्चे खेल रहे हैं, किसी को भी उठा लो ना। तो उन्होंने कहा, नहीं मुझे अपने बच्चे चाहिए। प्रभुपाद ने कहा, वैसे मुझे अपने मंदिर चाहिए जहां पर हम हमारे नियम के अनुसार भगवत भजन इत्यादि करवा सकें। तो इसलिए यहां पर ब्रह्मा जी प्रार्थना कर रहे हैं मंदिर में जाकर, अर्थात क्षीर सागर के तट पर, और अकेले नहीं जा रहे, साथ में सारे देवतागण हैं। इसको कहते हैं संकीर्तन। संकीर्तन यज्ञ तारे कोरे आराधन, सेतो सुमेध आर कलिहत जन, भट्टाचार्य कोहे ऐ मधुर वचन, चैतन्यर सृष्टि ऐ प्रेम संकीर्तन, ऐछे प्रेम ऐछे नृत्य ऐछे हरि ध्वनि, कहा नहीं देखी ऐछे कहा नहीं सुनी, कौते का कहिब ऐ देखिय तजन, चैतन्यर सृष्टि। हाँ, तो ये बड़ा महत्वपूर्ण है कि जब हम एकत्रित होके भगवान के सामने निवेदन करते हैं, एक अकेला व्यक्ति अगर सरकारी दफ्तर के सामने जाकर, दिल्ली के नॉर्थ ब्लॉक में जाकर जहां सारे मंत्रियां रहते हैं और उनके ऑफिस हैं, सारे मिनिस्ट्रीज हैं, अकेला व्यक्ति खड़े होकर चिल्लाएगा, सुनो सरकार मेरी समस्या है, आइए मेरी बात मानो, तो कोई एक संतरी भी आके झापड़ मार के चला जाएगा उसको, लेकिन लाख लोग एकत्रित होकर मोर्चा निकालें तो उस मोर्चा की ताकत को देखकर बड़ी से बड़ी सरकार भी झुक जाती है। इसलिए बड़े से बड़े विशाल शक्तिशाली सत्ता को झुकाने के लिए समूह की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए महाप्रभु ने कहा, हाँ व्यक्तिगत रूप से जो हम भगवान से निवेदन करें वो जप की श्रेणी में आता है, लेकिन उसके साथ साथ जब समवेत सारे भक्त लोग एक साथ मिलकर भगवान के सामने जय घोष करें और नारे लगाएं और भगवान के सामने आंदोलन करें, तो भगवान भी जाग कर देखते हैं ये कौन है भैया, इतनी ध्वनि क्यों हो रही है। तो इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु ने यह संकेत किया कि केह नाच केह गाहे श्री कृष्ण गोपाल, प्रेमे ते भासी लोक स्त्री वृद्ध अबाल। इस महाप्रभु के आंदोलन में हर श्रेणी हर वर्ग का व्यक्ति एकत्रित होकर भगवान का नाम ले, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जय श्रील प्रभुपाद की। तो ये प्रभुपाद जी ने हरे नाम संकीर्तन पूरे विश्व भर में फैलाया। लॉस एंजलस में हरे नाम संकीर्तन करते हुए भक्त लोग जा रहे थे, तो वहां पर एक बहुत बड़ा ड्रग डीलर था। वो ड्रग डीलर कई मर्डर वर्डर कर चुका था और वो पुलिस से भाग रहा था, और भागते भागते वो वहां से हरिनाम संकीर्तन के बीच में आके बैठ गया और हरिनाम के साथ साथ चलने लगा, मंदिर आ गया और पुलिस ढूंढ नहीं पाई कहाँ गया। अब हरिनाम के साथ जब वो मंदिर आ गए तो मंदिर के अंदर देखते हैं कि छुपने की अच्छी जगह है, तो बहुत प्रभावित हुए और बोले यार यहीं रह जाता हूं, यहां रहूंगा तो पुलिस ढूंढ नहीं पाएगी। तो उन्होंने प्रश्न पूछा कि यहां रहने के लिए क्या करना होगा, तो बोले कि भैया आपको जप करना होगा। बोले ठीक है कर लेंगे। तो देखा कि भक्त लोग हाथ में माला लेके बैठते थे, तो थैली को लिया लेकिन थैली के अंदर उन्होंने कोई माला नहीं रखा, केवल खाली थैली लेकर बैठते थे और हिलाते रहते थे उसको। बोले यार कम से कम लोगों को लगेगा मैं कुछ कर रहा हूं, लेकिन ये नाम लेने का धीरज मेरे पास नहीं। तो फंसाने के लिए केवल थैली लेके बैठ जाते थे, थोड़ी देर ऐसे ऐसे करके निकल जाते थे सोने के लिए। लेकिन धीरे धीरे परिवर्तन आने लगा और लगभग एक साल के बाद वो जप अप भी करने लगे, और वो फिर प्रेसिडेंट के पास आके बोले कि वास्तव में मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं। प्रेसिडेंट बोले, बोलो। बोले मैं वो नहीं हूं जो आपको लगता है। प्रेसिडेंट बोले, हाँ हर जीव का यही हाल है, लेकिन नहीं नहीं वो नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि वास्तव में मैं बहुत पापी हूं। तो प्रेसिडेंट बोले, अरे तो बड़ी नम्रता आपकी। अरे बोले नहीं बाबा मैं नम्रता की बात नहीं कर रहा हूं, वास्तव में मैंने बहुत लोगों की हत्या की है, पुलिस से फरार होके भागा हूं। और पूरा डिटेल जब बताया, प्रेसिडेंट बोले, बाबा भगवान को सरेंडर बाद में करो, पहले पुलिस को करो, नहीं तो हम लोगों का दिवाला निकल जाएगा। पुलिस के पास गए तो पुलिस भी उनके नए हुलिया सैफरन और शेव्ड हेड को देख के पहचाने नहीं। बोले हाँ भाई क्या काम है। बोले मैं आत्मसमर्पण करने आया हूं। तो बोले भैया ये हरे कृष्णा मंदिर नहीं है, ये पुलिस थाना है। बोले नहीं नहीं लेकिन मैं वो हूं, और पूरा अपना डिटेल बताया तो पुलिस ने चेक किया। बोले ये हुलिया क्या हो गया तुमको। तो फिर जज के सामने लाए तो जज ने पूछा कि आप करते क्या हो, तो बोले सुबह उठते हैं, स्नान करते हैं, कीर्तन करते हैं, प्रसाद वितरण करते हैं, बुक्स बांटते हैं, ये सब पूरा डिटेल में बताया। तो जज बोला कि चलो कोई बात नहीं, आपके सारे अपराधों को हम माफ करते हैं, और कहने लगे ये व्यक्ति अपने आप बिना किसी के जोर के जेल से भी खतरनाक जीवन जी रहा है, तो इसलिए इसको और अलग से जेल भेजकर सरकार का खर्चा बढ़ने की क्या आवश्यकता है, वहीं रहने दो। तो हरिनाम संकीर्तन से प्रेरित होकर लोग जुड़ जाते हैं और ये हरिनाम हृदय के भीतर क्रांति मचाता है। इसलिए प्रभुपाद जब अमेरिका में थे तो तो भारत से कई कई अलग अलग प्रकार के साधु बाबा योगी इत्यादि प्रचुर मात्रा में अमेरिका में प्रचार कर रहे थे। तो प्रभुपाद जी लॉस एंजलस के एयरपोर्ट में उतरे और जब एयरपोर्ट में आए तो उनको एक रिपोर्टर ने पूछा कि स्वामी जी आप बताइए कि भारत से इतने सारे अलग अलग योगी बाबा स्वामी इत्यादि आए हैं जो अलग अलग फिलॉसफी बता रहे हैं, ये बनो वो करो, ये करो वो करो, उनके बारे में आपका क्या विचार है? तो प्रभुपाद ने तुरंत उत्तर दिया, दे आर ऑल नॉनसेंस। तो ये रिपोर्टर घबरा गया, बोले यार मेरे को तो वीकेंड का पूरा डिटेल आर्टिकल छापना है, और मुझे लगा कि ये स्वामी प्रभुपाद जी मुझे डिटेल में बताएंगे, तो एक ही शब्द ने पटा दिए। वो पीछे पीछे भागे प्रभुपाद के, प्रभुपाद आगे निकल गए थे, स्वामी जी रुकिए, एनीथिंग एल्स यू वॉन्ट टू एड? प्रभुपाद ने कहा यस वन मोर थिंग, दे आर रैस्कल ऑल्सो। तो बस प्रभुपाद ने एक एक शब्द में उसको रफा दफा कर दिया। तो प्रभुपाद जी उस समय कठोर शब्दों में भर्त्सना करते थे जिससे कि लोग समझें कि ये हमारे आध्यात्मिक भक्ति के समझ की सीमा है, क्योंकि सब लोग नए नए थे और कई तत्वों को देखकर आकर्षित हो जाते, उनको लगता है ये भी बढ़िया है, ये भी बढ़िया है। प्रभुपाद ने पूरा सीमा बांध दिया, इसके अंतर्गत तुमको चलना है। इसलिए ब्रह्मा जी सभी देवताओं के साथ आए हैं भगवान से प्रार्थना करने, और विशेष रूप से वो नेतृत्व कर रहे हैं कि इस प्रकार प्रार्थना करनी है। तो उस समय प्रभुपाद जी जब अमेरिका में प्रचार कर रहे थे तो बहुत फेमस था साइलेंट मेडिटेशन, आंखें बंद करके मुंह बंद करके बैठ जाओ अंधेरे कमरे में। तो एक भक्त बाहर आके बोला, प्रभुपा जी ये साइलेंट मेडिटेशन में भी बहुत बहुत स्ट्रेस रिलीफ मिलता है, बाहर आने के बाद बहुत फ्रेश लगता है। प्रभुपाद ने कहा आधा घंटा सोने के बाद तो लगेगा ही। तो एक हमारा भक्त लाइब्रेरी में किताब खोज रहा था साइलेंट मेडिटेशन का, तो इतना बड़ा साइलेंट मेडिटेशन का बुक पढ़ा और 4 घंटा पढ़ने के बाद कुछ समझ में नहीं आया, फ्रस्ट्रेट होके बुक बंद किया, बुक शेल्फ पे रखा। बड़े क्रोध से जैसे बुक शेल्फ में रखा, बुक शेल्फ थोड़ा हिला और ऊपर से एक छोटा बुक ऊपर से निकला, सर पे गिरा, नीचे गया। बुक खोला, छोटा सा बुक था, उसको खोला तो उसमें लिखा था साइलेंट मेडिटेशन इज बोगस एंड नॉट फॉर दिस एज। जो 4 घंटे में नहीं समझा एक लाइन में समझ गया, और देखा बुक का टाइटल परफेक्शन ऑफ योगा बाय हिज डिवाइन ग्रेस श्रील प्रभुपाद। तो तुरंत मंदिर खोजते खोजते जुड़ गया, और साइलेंट मेडिटेशन ने जो काम नहीं किया वो हरिनाम संकीर्तन ने क्षण भर में कर दिया। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे। तो इसलिए भगवान श्री कृष्ण का इस जगत में द्वापर युग में अवतार के पीछे मूल कारण ही है संकीर्तन, और वो संकीर्तन किया ब्रह्मा जी ने ब्रह्मांड के सभी देवताओं को साथ लेकर। और जब संकीर्तन हम करते हैं इसके पीछे एक और बहुत बड़ी शक्ति क्या होती है कि अगर एक व्यक्ति अपने हृदय की वेदना भगवान को व्यक्त करे, और हो सकता है उसके मन में कुछ कपट हो, अशुद्धता हो और तीव्रता इतनी न हो, तो हो सकता है उनके इस प्रार्थना की भगवान उपेक्षा कर दें। लेकिन जब लाख लोग एक साथ मिलकर प्रार्थना करते हैं तो हो सकता है उन लाख लोगों में 5-10 ऐसे हों जो बहुत शुद्ध हों और बहुत प्रगतिशील हों और बहुत तीव्र हों अपनी प्रार्थना में। तो उन 8-10 लोगों के प्रार्थना के गुणवत्ता क्वालिटी और शक्ति को देखकर भगवान आकर्षित हो जाते हैं और फिर उस प्रार्थना का उत्तर देने तैयार हो जाते हैं, और तत्पश्चात बाकी जितने 99,000 लोग हैं उनको भी उसका लाभ मिलता है। तो इसलिए जब हम लोग एक साथ संकीर्तन करते हैं, हो सकता है कोई पूरी तीव्रता से करे, कोई उपेक्षा पूर्ण करे, लेकिन सब एक साथ करते हैं तो भगवान का ध्यान सभी के ऊपर आता है और फिर हमको उसका लाभ प्राप्त होता है। इसलिए हम लोग जब यात्रा वगैरह में जाते हैं तो अभी तक हमको भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं, किसी भी भक्त समुदाय की प्रगति उसके उनके लीडर के भक्ति के ऊपर निर्भर करती है। और भक्ति का एक लक्षण भक्ति विनोद ठाकुर ये भी बताते हैं कि अगर कोई भक्त ने निष्ठा के आगे रति, आसक्ति, भाव, प्रेम इत्यादि का रस चखा हो, तो वो अपने उस शक्ति से, स्वयं की भक्ति शक्ति से, दूसरों के हृदय के भीतर भी भक्ति का परिचय, भक्ति का विज्ञापन, भक्ति का स्पर्श कुछ मात्रा में करा सकते हैं, कुछ समय के लिए एक झलक दे सकते हैं। लेकिन उस साधक को समझना चाहिए, ये जो भक्ति की अनुभूति मुझे हो रही है वो मेरे स्वयं के साधना भक्ति का परिणाम नहीं है। वो जो हमारे नेता हैं जो हमको लीड कर रहे हैं, और उनके भक्ति की शक्ति का एक झलक वो हम पर छिड़क रहे हैं। तो इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं, ये भक्त समुदाय की शक्ति है कि जब महान वैष्णव, जो कि भक्ति के, जिसने वास्तव में अपने जीवन में भक्ति को चखा है, वो दूसरों को भी एक बूंद भक्ति का चखा देगा। और उस भक्ति के एक बूंद को चखकर व्यक्ति को लगता है कि मैं भी भक्त बन गया, लेकिन वास्तव में जब वो बूंद चखना बंद करा दे, तब समझ में आता है कि तूने कितनी भक्ति की है। तो इसलिए जब प्रभुपाद थे तो प्रभुपाद के आसपास रहने वाले, प्रभुपाद के उपस्थिति में भक्ति करने वाले लोगों को लग रहा था कि हम लोग कितनी भक्ति कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में उसमें अधिकतर श्रेय प्रभुपाद जी का था, जिनके भक्ति के प्रताप से दूसरों के ऊपर भी स्पर्श हो रहा था। तो इसलिए समझना चाहिए कि जब हम किसी भक्ति के कार्य में लगे हों, वो भक्ति का अनुभव जो मुझे हो रहा है वो हमेशा अपने निजी भक्ति के अनुभव का नहीं है, वो मेरे निजी भक्ति के प्रयास का वो परिणाम नहीं है। तो इसलिए कई बार लोग ये विचार करते हैं, जब यात्रा चलती है बड़ा आनंद आता है, और यात्रा जब समाप्त हो जाती है फिर लगता है अरे कितना संघर्ष है। क्योंकि यात्रा में जब चल रहे हो, वहां जो कथा और कीर्तन इत्यादि हो रहा है, वो इसलिए क्योंकि परम पूज्य राधानाथ महाराज ने पिछले 30 साल में सारे कांग्रीगेशन को, सारे भक्तों को अपने भजन का एक अंतरंग अंग बना लिया और कहा कि भाई मैं भजन कर रहा हूं, मेरे भजन करते हुए अपना द्वार मैं खोल रहा हूं, आप भी आइए, इस भजन का दो बूंद लूट लीजिए, जिससे कि आप इसको चखो, और चखने के बाद आप अपने भजन में वैसी तीव्रता दिखाओ। तो ये भक्ति विनोद ठाकुर अपने विचारों में व्यक्त करते हैं। लेकिन उस दो बूंद को चखने के बाद व्यक्ति को अपना प्रयास करना होगा, और इसी को तो दामोदर लीला में हम लोग कहते हैं कि एक भगवान की कृपा और एक भक्त का प्रयास। तो इसलिए ये दोनों साथ में जब चलेगा तब हम भक्ति में आगे बढ़ पाएंगे। तो इसलिए जिस प्रकार का अनुभव चौपाटी में हम लोग देखे, जो महाराज की उपस्थिति में हुआ, वही चीज हम महाराष्ट्र के हर शहर में रिपीट नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि जो भजन है, जो वास्तव में कृष्ण का भजन अनुभव किया है, वही दूसरों को चखा सकता है। तो इसलिए यहां पर ब्रह्मा जी सभी देवताओं के साथ भगवान के पास गए हैं और भजन से संबंधित इन गोपनीय तत्वों को बताने कि ये मत सोचो कि इतना आसान है, जिसने जो चखा है वही दूसरों को आस्वादन करा सकता है। इसलिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते थे, हु इज द बेस्ट प्रीचर। दो प्रकार के होते हैं, एक भजनानंदी एक गोष्ठ्यानंदी, जो स्वयं भजन कर रहा है और जो दूसरों को प्रचार कर रहा है। तो बोले द बेस्ट प्रीचर इज द भजनानंदी हु प्रीचेस। तो सबसे पहले चाहिए कि इस्कॉन के भक्तों को हरिनाम भागवत अर्च विग्रह आराधना धाम ये चार तत्वों में पूरी तरह रचना है, पचना है, निमग्न होना है, आस्वादन करना है। ठीक है, तो हो सकता है गाड़ी चलते समय पीछे से कोई धक्का मारे। जब गाड़ी अपनी चलती नहीं तो धक्का मारने के लिए हम चार पांच लोगों को कह देते हैं, वो धक्का मारते हैं। लेकिन धक्का मारने के बाद जब वो धक्का मारे तो अपने को फिर इंजन स्टार्ट करने का प्रयास करना चाहिए, और जितना धक्का लगा है मोमेंटम मिल गया, उस धक्के से अपना इंजन चालू करो, और अपना इंजन चालू करके फिर गाड़ी चलाने का उत्तरदायित्व तो अपना है। ये नहीं कि धक्का मारते हुए बैठे आराम से स्टीयरिंग व्हील पे और गाड़ी बंद हो गई, अरे धक्का मारो और मारो धक्का और मारो धक्का और मारो धक्का। बोले कब तक मारेंगे धक्का। तो इसलिए जो भी हमें मार्गदर्शन प्राप्त तो होता है, गुरु का हो, काउंसलर का हो, लीडर का हो, वो एक दिशा देने के लिए। इस्कॉन के मंदिर अस्पताल की भांति है, जहां हम जाते हैं दवा लेने, केवल डॉक्टर का चेहरा देखकर उसका आरती उतार कर नहीं आने। तो इसलिए जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर दवा देते हैं, वो दवा लेके आते हैं, दवा लेने का उत्तरदायित्व तो पेशेंट का है, और वो पेशेंट दवा लेके आके घर पे रखे और बोले कि मेरी खांसी जा नहीं रही है, मेरी बीमारी कम नहीं हो रही है और मेरा बुखार जा नहीं रहा है, क्यों? तो हम पूछेंगे, भैया दवा ले रहे हो क्या? बोले क्या दवा लेने का मूड नहीं हो रहा। बोले क्यों? अरे डॉक्टर प्रेम नहीं करते। अरे डॉक्टर प्रेम करे ना करे, आपको तो लेना है दवा। तो इसलिए हमें चाहिए कि समझें कि इस्कॉन मंदिर का अस्तित्व इसलिए है कि हम लोग वहां जाकर दवा ले सकें, औषधि ले सकें। ये बात अलग है कि राधानाथ महाराज ने भक्तों के साथ इतना प्रेम का व्यवहार किया, ऐसे डॉक्टर बने जो हर पेशेंट के घर के विषय में, जीवन के विषय में इतना प्रेम से बात कर करके ऐसा हर पेशेंट को लगने लगा कि ये तो हमारे परिवार के सदस्य हैं डॉक्टर। लेकिन ये डॉक्टर का ड्यूटी का लिस्ट से बाहर का ये कार्य था जो उन्होंने किया। ही वेंट बियॉन्ड द कॉल ऑफ ड्यूटी। ये हर डॉक्टर से अस्पताल अपेक्षा नहीं करता कि तुम्हारा बच्चा कौन है, उसका बच्चा कौन है, तुम्हारे घर पे शादी ये है वो है, पारिवारिक हर प्रकार के विषयों को लेकर उनके परिवार का सदस्य बने। नहीं, डॉक्टर का कार्य है दवा देना। और अधिकांश परंपरा में जितने आचार्य गण हुए हैं वो कभी इस प्रकार इतने विस्तृत रूप से लोगों के जीवन में जुड़े नहीं हैं, क्योंकि संभव भी नहीं है। तो इसलिए हमें चाहिए कि जो हम दवा प्राप्त करें उस औषधि को लें, और उस औषधि को लेकर हम उल्टा डॉक्टर प्रश्न पूछना चाहिए, अरे तू दवा ले रहा है कि नहीं? और यहां उल्टा पेशेंट पूछ रहे प्रश्न डॉक्टर को, आप पूछते नहीं हमको, अब हम दवा ले रहे हैं कि नहीं? बोले यार दवा दे दिया, उससे और क्या चाहिए, मैं ला के पिलाऊं भी क्या? तो इसलिए यहां उल्टी गंगा बह रही है। तो हमको चाहिए कि एक बार दीक्षा ले लिया, भक्ति में आ गए, और बाहर की दुनिया में तो बॉस पूछते रहते हैं सबॉर्डिनेट को, ये हुआ क्या, वो हुआ क्या। यहां पर सबॉर्डिनेट बॉस को पूछते रहते हैं, आगे आप दीक्षा कब देने वाले हो, ये कब होने वाला है, वो कब होने वाला है। जो एक दृष्टि से देखा जाए तो सीमा पार जो है परिस्थिति है। तो अवश्य जगाम सत्री नयन तीरम क्षीर पयो निधे, ब्रह्मा जी सभी देवताओं को लेके गए हैं और प्रार्थना कर रहे हैं, हे प्रभो आप प्रकट हो जाइए। और भगवान की प्रार्थना, भगवान इन प्रार्थनाओं को सुनकर ब्रह्मा जी से प्रसन्न हो जाते हैं और कहते हैं ठीक है, उन सभी को बोलिए कि वो अलग अलग घरों में जन्म ले। भगवान कहते हैं उनको अलग अलग स्थानों में जन्म लेने के लिए। ब्रह्मा जी आते हैं और विधिवत आकर कहते हैं सबको, मैंने भगवान का दर्शन किया और भगवान ने कहा है आप सभी जन्म लीजिए। तो भगवान ने ब्रह्मा जी को कहा, ब्रह्मा जी ने बाकी लोगों को सुना दिया, भगवान ने ब्रह्मा जी को कहा सबको बोलो आप सभी जन्म लो, ब्रह्मा जी ने आके सबको कहा आप सभी जन्म लो, एक आदमी छूट गया, कौन, ब्रह्मा जी। तो भगवान ने कहा कि बराबर दूसरों को सेवा में लगाया है, खुद छूट गया, इसको भी मैं नियुक्त करूंगा अपनी सेवा में, ब्रह्म विमोहन लीला के माध्यम से। आगे तो भोज वृष्णि इत्यादि जितने साम्राज्य थे वहां पर सारे देवतागण जन्म लेने लगे। और तब देवकी और वसुदेव के विवाह के पश्चात कंस दोनों को रथ में आरूढ़ करके ले जा रहे थे, अचानक आकाशवाणी हुई और आकाशवाणी ने संकेत किया कि हे कंस, कितना मूर्ख है, इतना प्रेम व्यक्त कर रहा है अपने बहन के प्रति। आप समझो कि आपको पता नहीं कि भविष्य में यही देवकी का आठवां पुत्र तुम्हारी मृत्यु का कारण बनने वाला है। जैसे कंस ने ये आकाशवाणी सुनी उनका रवैया बदल गया। अब तक इतना प्रेम व्यक्त कर रहे थे, अचानक वही प्रेम बीभत्स घृणा में परिवर्तित हो गया। देवकी के केश को अपने बाएं हाथ में पकड़ा, दाएं हाथ में तलवार उठाया और अगले ही क्षण वो तलवार देवकी के गले में आकर कटने वाला था। तो अब देखिए परिस्थिति क्या है। एक दृष्टि से देखा जाए तो कोई संभावना नहीं देवकी का बचने का, क्योंकि कंस के भुजाओं में 10,000 गजराजों का बल था और इतने शक्तिशाली कंस अपने हाथ पर तलवार लिए, संकल्प कर लिए कि अब मैं इसकी हत्या करूंगा, तो इसको कहते हैं ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल सिचुएशन। तो जब तलवार उठ चुका, अगले ही क्षण तलवार नीचे आने वाला है, तो बच गया केवल 3 सेकेंड। तो 3 सेकेंड में जब परिणाम घोषित होने वाला है कि देवकी का सर कटेगा, तो कई बार जब हम संभावना को देखते हैं, संभावना को देखकर हम लोग हतोत्साहित हो जाते हैं, क्योंकि हमको परिणाम से पहले हम परिणाम निकाल देते हैं। तो इसलिए कहा गया है स्ट्रेस के विषय में, जो लोग बहुत अधिक चिंता करते हैं, तो बड़े बड़े साइकेट्रिस्ट ने एक स्टैटिस्टिक्स निकाला है कि हम प्रतिदिन जो चिंता करते हैं उसमें 65% चिंताएं कभी फलित नहीं होती, 65% ऑफ आवर वरीज नेवर मैनिफेस्ट। 15% जो है वो ऐसा है कि उसको हम बदल नहीं सकते, और 17-18% वो है जो ऑलरेडी हो चुका, कुछ नहीं कर सकते। तो लगभग केवल 5-6% ही बचता है कि जो वास्तव में जिनके ऊपर हमारा कुछ नियंत्रण है और जिसके विषय में चिंता करने योग्य है। तो इसलिए यहां वसुदेव जी का चरित्र बड़ा महत्वपूर्ण है इस बात को समझने की, जैसे वसुदेव जी ने कृष्ण को अपने पुत्र के रूप में स्वीकार किया, आकर्षित किया और जन्म लेने पर बाध्य किया। अगर साधक अपने हृदय में भगवान श्री कृष्ण को जन्म देना चाहता है तो साधक का मानसिक रवैया वसुदेव के जैसा ही सकारात्मक और आशावादी होना आवश्यक है। वन हैज टू बी पॉजिटिव एंड ऑप्टिमिस्टिक लाइक वसुदेव। तो इसलिए वसुदेव जी ने देखा कि जब कंस का तलवार उठ गया, आप और मैं सोचते अरे मर गए, छोड़ो अभी क्या करें, लेकिन वसुदेव जी ने कहा कोई बात नहीं, अभी भी मेरे पास 3 सेकंड तो है, वो 3 सेकंड में भी मैं बहुत कुछ कर सकता हूं। इसलिए सेवा कभी भी हमारे शक्ति सामर्थ्य वस्तु रिसोर्सेस के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। सेवा इज नॉट रिसोर्स डिपेंडेंट, इट इज ओनली डिजायर डिपेंडेंट। तो अगर आपकी इच्छा हो अथवा नहीं, तो इसलिए कंस ने जब तलवार उठाया तो केवल उठे हुए तलवार को देखकर आप और हम उस तलवार से अपनी इच्छा को मार देते हैं, लेकिन वसुदेव जी ने देखा कि जब तक वो तलवार नीचे ना आए, अंतिम क्षण तक मैं इच्छा करता रहूंगा कि देवकी की जान बच जाए। और इसलिए जो इस प्रकार आशावादी हो, हर प्रकार के दूसरे चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों को देखते हुए भी वो स्वयं अपना प्रयास करने में न कतराए, ऐसा भक्त ही कृष्ण को अपने घर पर अपने हृदय में आकर्षित कर सकता है। और वसुदेव जी वहीं पर खड़ा होकर कंस को तत्व ज्ञान बताने लगे, शरीर और आत्मा का अंतर बताने लगे, किस प्रकार ये शरीर क्षणभंगुर है, नश्वर है, आत्मा अमर है, अजर है, चाहे कैसे भी आपका शरीर हो, इस शरीर को त्यागना ही पड़ेगा। सारा डिटेल तत्व ज्ञान उन्होंने बता दिया कंस को। और तब यहां कंस ने विचार किया कि कोई बात नहीं, हम एक अवसर देंगे। और उन्होंने वसुदेव जी को कहा कि कोई बात नहीं, आप जाइए और मैं आपकी बात से पूरी तरह आश्वस्त हूं, और जब पुत्र होगा तब देखा जाएगा। तो वसुदेव जी को छोड़ दिया, वसुदेव और देवकी गए और उनको बंदी बना लिया कारागृह में। प्रथम पुत्र हुआ तो पुत्र को लेकर वसुदेव जी गए और कंस के सामने समर्पित किया। कंस का हृदय पिघल गया। कंस वसुदेव जी को देखकर कहते हैं, अरे आप इतने शिष्ट हो कि वचनबद्ध हो, आपने जैसे वचन दिया वैसे पालन कर रहे हो, कोई बात नहीं, मुझे तो 8वें पुत्र से समस्या है, पहला पुत्र आप अपने पास रखो। कंस के हृदय में भी करुणा की भावना आ गई। लेकिन जैसे ही वसुदेव जी अपने पुत्र कीर्तिमान को लेके गए, नारद मुनि वहां पहुंच गए। नारद मुनि अपने हाथ में कमल पुष्प लेके आए और कमल पुष्प की पंखुड़ियों को कंस के सामने दिया। कंस ने अपने हाथ में लिया और पूछा, नारद मुनि जी क्या कहना, क्या संकेत करना चाहते हो? नारद मुनि ने कहा, कंस मैं चाहता हूं कि तुम इस कमल की गिनती करो, पहली पंखुड़ी कौन सी है, 8वीं। तो कंस गिनने लगा, 1 2 3 4 5 6 7 8। फिर नारद मुनि ने उसको घुमा दिया, बोले अब वापस करो। तो बोले अब 1 2 3 4 5 6 7 8, अरे ये तो अलग है। तो नारद मुनि ने कहा, वही मैं कहना चाह रहा हूं, अरे आज के जमाने में जो सामने से मित्र कुछ बोलता है विश्वास नहीं कर पाते, आकाशवाणी का क्या गारंटी, कह दिया है 8वां पुत्र लेकिन पहला दूसरा ही निकला तो क्या करोगे, गारंटी है क्या, कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है क्या कि 8वां ही करेगा? कंस ने कहा, सही कहते हो। तो इसलिए नारद मुनि ने कहा, चांस मत लो, जमाना खराब है। तो तुरंत कंस गए प्रथम पुत्र के पास और उस नन्हे से शिशु को अपने हाथों में उठाया और वसुदेव और देवकी माता पिता के सामने कारागृह के अंदर एक पथरीली चट्टान के ऊपर उसके सर को दे मारा और निर्मम रूप से उनकी हत्या कर दी। अब सोचो, अपने आंखों के सामने अपने ही शिशु के इस प्रकार हत्या देखकर किस माता पिता के मन में ये विचार भी आएगा कि दूसरा पुत्र पैदा करें, जब पता है दूसरे की भी ऐसी दुर्दशा होगी। तो इसलिए भगवान कहना चाह रहे हैं कि मेरे जन्म से पूर्व वसुदेव और देवकी को बहुत दर्द और कष्ट अनुभव करना पड़ा, और जो सकारात्मक रवैये के साथ ऐसे दर्द को अनुभव करने के लिए तैयार हो, ऐसे भक्त के जीवन में मैं प्रकट होता हूं। आईआईटी में मैं लेक्चर दे रहा था जन्माष्टमी का, उसके बाद एक मेरे पास स्टूडेंट आए और बोलते हैं, अरे जब मालूम था कि आठवां पुत्र मृत्यु का कारण बनेगा तो वसुदेव और देवकी को कंस ने एक ही जेल में क्यों बांधा, वसुदेव को एक जेल में डाल देते, देवकी को दूसरे जेल में डाल देते, एक भी पुत्र नहीं होता। फिर वो कहता है कि अरे कंस को इतना सिंपल आइडिया भी चमका नहीं क्या। मैंने कहा क्या करे, कंस आईआईटी में गया था, आगे की लीला में हम उनको संकेत कर देंगे। तो जन्माष्टमी तो हम लोग हर वर्ष मनाते हैं, लेकिन अपने निजी जीवन में जब छोटी सी समस्या आ जाती है, अड़चन बाधा आ जाती है, हम लोग हतोत्साहित हो जाते हैं, आशा खो बैठते हैं और हर प्रकार से आलोचना करने लगते हैं, परेशान हो जाते हैं, भक्ति मार्ग पर ही प्रश्न चिन्ह करने लगते हैं। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि मेरा भक्त बनने से पूर्व पहले भली भांति जान लो कि कृष्ण प्रोडक्ट के रूप में तो बहुत आकर्षक है। अमेजोन में कोई भी प्रोडक्ट देकर तुरंत ऑर्डर मत दे देना, प्रोडक्ट अच्छा लगे तो पहले क्या देखना, रेट क्या है। रेट देखकर अगर लगे कि पेट में पचेगा तब जाकर ऑर्डर दो। इसलिए समस्या यह है कि अधिकांश लोग कृष्ण का भक्ति स्टार्ट कर देते हैं सोच के कि कृष्ण भक्ति मतलब हलवा खाना, कृष्ण भक्ति मतलब थोड़ा नाचना, कृष्ण भक्ति मतलब मजा मस्ती करना, थोड़ा धाम वाम घूम के आएंगे, मनोरंजन मानकर चलते हैं, है कि नहीं। ये तो यही कि प्रोडक्ट देखा और रेट को पूरा देखने के पहले ऑर्डर कर दिया। किसी ने पूछा रेट देखा कि नहीं, हाँ वो 1 लिखा था उसके आगे नहीं देखा, नहीं मालूम पड़ा 5-0 और था, वो बाद में मालूम पड़ता है। तो इसलिए इसमें प्रचारकों का भी दोष है, क्योंकि प्रचारक भी चाहते हैं कि अस्पताल में कस्टमर को खूब भरे और समय से पहले भर देते हैं, फिर बाद में बोलते हैं लेकिन बिल क्या, अरे बाद में देखा जाएगा। तो इसलिए दशम स्कंद में चेतावनी दे रहे हैं कि कृष्ण ने अपनी माता और पिता को ही इतना कष्ट दिया, तब जाकर 6 पुत्रों की हत्या के पश्चात बलराम जी प्रकट हुए, बलराम जी को स्थानांतरित किया, फिर कृष्ण गर्भ में प्रवेश किए, और जब भगवान श्री कृष्ण अष्टमी के दिन प्रकट हुए वसुदेव और देवकी, उनकी प्रार्थना करने लगे, ततश्च शौरी भगवत प्रचोदित सुतम समादाय च सूतिका गृहात्। वसुदेव जी का नाम यहां शौरी कहा गया है, जो बड़े शौर्य प्रदर्शन किए, जिसने तलवार उठाकर आज तक एक भी प्रतिद्वंद्वी को पराजित नहीं किया, उसको शौर्य प्रदर्शन की पद क्यों दी जा रही है। वाई ही इज ही कॉल्ड ब्रेव वेन ही हैज नो रिकॉर्ड ऑफ डिफीटिंग एनीबडी। तो कह रहे हैं कि हो सकता है सामाजिक दृष्टि से शौर्य की परिभाषा है दूसरों को पराजित करना, लेकिन भागवत के दृष्टिकोण से शौर्य की परिभाषा है स्वयं हर प्रकार से पराजित होने पर भी उत्साह न खोना, ये वास्तविक शौर्य है। इसलिए जीवन में आप कई बार हारोगे, लेकिन जो हारने पर भी हरि का नाम मुंह पर रखे, मन में ले, वो वास्तव में विजयी है। इसलिए उनको कहा गया है ततश्च शौरी भगवत प्रचोदित, तुरंत भगवान ने उनको कहा सुतम समादाय च सूतिका गृहात्, मुझे यहां से उठाइए, ता कृष्ण वाहे वसुदेव आगते स्वयं व्यवर्तन्त यथा तमोरवे, उठाकर मुझे यहां से लेके चलिए और यमुना पार करके मुझे गोकुल तक पहुंचाइए। तो प्रश्न उठता है कि वसुदेव जी के मन में संदेह आ सकता था कि मैं अगर उठाऊं तो फिर बेड़ियां बंदी है, हाथ में जंजीर है, श्रृंखलाएं हैं, जेल के द्वार बंद हैं, बाहर कंस के कितने सैनिक हैं, फिर यमुना में बाढ़ है, तो उस सेवा को संपन्न करने में कितनी बाधाएं थीं। लेकिन वसुदेव जी अपने उदाहरण से बता रहे हैं, जब कृष्ण के साथ संबंध जोड़ो तो अपने सभी संशयों को तोड़ो और केवल कृष्ण के वाणी को अपने हृदय में धारण करो। जैसे ही हम कृष्ण की सेवा आरंभ करते हैं, कृष्ण की शक्ति से बाधाएं कटेंगी, दूर होंगी। तो इसलिए वसुदेव जी ने उस समय कृष्ण के प्रस्ताव को नकारा नहीं, प्रश्न नहीं किया। जैसे ही कहा मुझे उठाओ, तुरंत उठा दिया, क्योंकि कृष्ण की सेवा, कृष्ण की भक्ति हमारे वर्तमान और भूतपूर्व योग्यताओं, सफलताओं या पराजयों के ऊपर निर्भर नहीं करता। इस जगत में कोई भी व्यक्ति आपको नौकरी दे तो सबसे पहले देखेगा आपका पुराना रिकॉर्ड। ट्रैक रिकॉर्ड और रेफरेंस के बिना कहीं नौकरी मिलेगी नहीं। भगवान कहते, मैं एकमात्र ऐसा व्यक्ति हूं जो बुरी तरह पिटे हुए व्यक्ति को भी हीरो बना दूंगा। क्यों? क्योंकि असली हीरो मैं हूं। भगवान कहते बाकी सबको चाहिए निमित्त बनना है। तो इसलिए भगवान सुग्रीव को भी कहते हैं, शक्रदेव प्रपन्नो यस्तवास्मि इति याचे, अभयम सर्वदा तस्मै ददामि। अगर वहां बाहर विभीषण खड़ा हो उसको लेके आओ। विभीषणो वा सुग्रीवो यदि वा रावण स्वयं, अगर रावण भी खड़ा हो उनको भी लेके आओ, मैं उनको शरणागति दे दूंगा, क्योंकि मैं शरणागत वत्सल हूं। तो ऐसा साहस दूसरा कोई नहीं कर सकता। इसलिए चाहे हम कितने ही बार अपने साधना में, अपने सेवा में पराजित हुए हों, भगवान श्री कृष्ण के दरबार में हतोत्साहित होने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि भगवान क्षण भर में किसी भी व्यक्ति के डूबते हुए नैया को उठाकर उसका उद्धार कर सकते हैं। और तब जाकर वसुदेव जी कृष्ण को उठाए। जैसे ही वसुदेव जी ने कृष्ण को अपने हाथ में उठाया, चमत्कार हुआ। हाथ की बेड़ियां टूट गईं, पैर के जंजीर कट गए, श्रृंखलाएं दूर हो गई, द्वार खुल गए, जितने सैनिक थे सब सो गए, यमुना ने अपना पट खोल दिया, और देखते ही देखते वसुदेव जी सीधा गोकुल पहुंच गए। और गोकुल में जाकर यशोदा माई के बगल में उन्होंने श्री कृष्ण और योग माया को स्थानांतरित कर दिया और योग माया को अपने हाथ में उठाकर ले आए। तो जैसे ही वसुदेव जी ने कृष्ण को उठाया, सारे बंधन और सारे अड़चने दूर हो गई। वैसे सेवक को चाहिए, भक्त को चाहिए कि प्रतिदिन प्रातःकालीन अरुणोदय की वेला में भगवान श्री कृष्ण के नाम को अपने मन में उठाए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। जैसे ही हम कृष्ण को अपने मन में उठाएंगे, सारे अड़चन सारी बाधाएं दूर हो जाएंगी। प्रातःकालीन हमको लगेगा ये सेवा मैं कैसे सिद्ध कर पाऊंगा, तो सुबह ये सोचने का समय नहीं है। सुबह केवल कृष्ण को अपने मन में उठाना है। आप कृष्ण को मन में उठाइए, फिर दिन में चमत्कारी रूप से अलग अलग मार्ग खुलते चले जाएंगे, जैसे वसुदेव जी के लिए मार्ग खुलता चला गया। तो इसलिए हमें चाहिए कि ये भगवान के ऊपर निर्भर रहें। 2006 में हमारे नित्य कृष्ण प्रभु को तो ऐसा लग रहा था कि अब अन्य लोगों की यात्रा चले जाएंगे, और इतने भक्त लोग प्रार्थना किए, और देखते ही देखते बहुत ही आपातकालीन परिस्थिति होते हुए भी वो उस संघर्षमय परिस्थिति से उठे, और तब लगा कि ये बेचारे क्या सेवा कर पाएंगे, लेकिन पहले से अधिक सेवा करने लगे। और न केवल ये, मैं पिछले 3-4 साल से देख रहा हूं कि कांग्रेगेशन के अधिकांश भक्त लोग जीव में कभी कभी आते हैं और लगता है इतना दूर है, कैसे आए कैसे नहीं आए, लेकिन इन सब स्वास्थ्य के समस्याओं को लेते हुए भी नित्य कृष्ण प्रभु 4 साल से यहां पर रेगुलर हर हफ्ते आ रहे हैं सेवा करने के लिए। और यहां पर जो है क्लिनिक है, हमरापुर के क्लिनिक में आकर रेगुलर अपना करके जा रहे हैं। ये इस बात का प्रमाण है कि भक्ति करने के लिए केवल एक वस्तु की आवश्यकता है, वो है इच्छा। और इच्छा हो तो सब हो सकता है, अगर इच्छा नहीं हो तो आदमी 50ों अलग अलग जो है बोलता रहेगा, ये करना है, वो करना है, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। तो इसलिए हमें चाहिए कि यहां पर वसुदेव जी का उदाहरण स्वीकार करें और वसुदेव जी के उदाहरण से हम वास्तव में प्रेरित हों कि हमें क्या करना चाहिए। तो यहां वर्णन आया है कि जैसे ही कंस के सामने, हाँ, जैसे ही उनको योग माया को लेके आए, कंस वहां आए और देखा कि 8वां तो पुत्री है, तो इसको देखकर कंस घबरा गए। कंस सोचने लगे, अरे आकाशवाणी भी गलती करता है, आकाशवाणी हुई थी कि पुत्र होगा, ये तो पुत्री हुई। तो कंस ने उसको उठाया और उठाकर पटकने का प्रयास किया, लेकिन उनके हाथ से वो पुत्री उठ गई और सीधा आसमान में चली गई, और ये थी दुर्गा देवी। और वो कहने लगे, अरे कंस, जो तुमको मारने वाला व्यक्ति है वो तो पहले ही दूसरे जगह उसका जन्म हो चुका। और तब कंस समझ गए कि अब कुछ करना होगा। और अब यहां पर कृष्ण का जन्म यहां पर वर्णन आ रहा है कि नंदस्तु आत्मज उत्पन्ने जाता लादो महामना आहूय विप्रान वेद ज्ञान स्नातः शुचि अलंकृत। तो यहां पर नंदस्तु आत्मज उत्पन्ने, नंद महाराज के यहां पर कृष्ण का जन्म हुआ, कृष्ण का प्राकट्य हुआ, लेकिन उससे नंद महाराज इतने प्रसन्न हुए तो तू शब्द का प्रयोग किया गया है। नंदस्तु, तू शब्द का प्रयोग क्यों किया गया है? इस बात को सिद्ध करने के लिए कि कृष्ण को पुत्र के रूप में प्राप्त करने के लिए किसने तपस्या की थी? वसुदेव और देवकी ने। तो तपस्या की वसुदेव और देवकी ने, लेकिन नंदोत्सव मनाने का आनंद किसको प्राप्त हुआ? नंद महाराज को। तो इसलिए अगर कहा जाए 16 माला आप करो भगवत धाम ये जाएगा, तो आप कहोगे ये क्या है? यह है कृष्ण कॉन्शियसनेस, कि भगवान किस प्रकार क्या लीला करेंगे ये गारंटी देना बड़ा कठिन है। अब जब उनका जब स्नान वान हो गया, अभिषेक हुआ नंदोत्सव का, गोपा परस्परम हृष्टा दधिक क्षीरा घृतांबुबी आसिंचन्तो विलिम्पन्तो नवनीतश्च चिक्षिपु। गोपा एक दूसरे के ऊपर नवनीत लगा रहे थे, घी मक्खन और घृत इत्यादि एक दूसरे के ऊपर फेंक रहे थे, क्योंकि उस समय प्रभुपाद कहते हैं गोप समुदाय कृष्ण को इतना संतुष्ट किए कि वहां पर ऐश्वर्य की कोई कमी नहीं थी। तत्पश्चात वसुदेव जी को मिलने के लिए नंद महाराज चले जाते हैं। कंसस्य वार्षिक्यम, कंस को अपना वार्षिक कर देने के लिए नंद महाराज जाते हैं। पूजित सुखम आसीनम, हाँ, पृष्ठवा अनामय मादृत प्रसक्त धी स्वात्मजयो हो इदम आह विषाम्पते दिष्ट्या भ्रात प्रवयस इदानीम अप्रजस्यते प्रजाशाय निवृत्तस्य प्रजात समपद्यत। तो वसुदेव जी को जाकर मिलते हैं नंद महाराज और कहते हैं, नंद महाराज को वसुदेव जी कहते हैं, क्योंकि प्रसक्त धी स्वात्मजयो, अभी वसुदेव के मन में इतनी चिंता उमड़ रही थी कि मेरे पुत्र का क्या हो रहा होगा, क्या नंद महाराज समझ गए क्या वो मेरा ही पुत्र है, कि अभी भी ये बात रहस्य है, वो कुछ समझ नहीं पा रहे थे। तो निरंतर उनके मन में चिंता थी कृष्ण के विषय में, लेकिन वो कृष्ण का किसी प्रकार से चर्चा अपने मुख पर नहीं ला सकते थे। तो ये वसुदेव जी की समस्या थी कि उनका मन शत प्रतिशत कृष्ण भावनामृत से पूरी तरह आच्छादित था। उनके मन के रोम रोम में कृष्ण छाए हुए थे। इतनी चिंता लगी थी कृष्ण के विषय में, लेकिन परिस्थितियां ऐसी थीं कि वो अपने वाणी से कृष्ण का नाम नहीं ले पा रहे थे। तो ये बहुत बड़ी चुनौती का विषय है, क्योंकि कई बार हम अपने वाणी में कृष्ण का नाम लें और मन में कृष्ण न हो, तो इससे कहीं अधिक श्रेष्ठ है कि मन में कृष्ण पूर्णतः हो और वाणी पर हम कृष्ण को न ला पाए। तो इसलिए यहां पर वसुदेव जी कहते हैं नंद महाराज को, दिष्टिया भगवान की कृपा से भ्रातः प्रवयस, अरे मेरे भैया, आपका इतना बड़ा उम्र हो गया, वयोवृद्ध आप हो गए, इदानीम अप्रजस्य थे, लेकिन इतने आयु में भी आपके पास कोई प्रजा नहीं। प्रजाशाय निवृत्तस्य, प्रजा की आशा से सामान्य व्यक्ति निवृत्त होता है, प्रजातत् समपद्यत, लेकिन फिर भी आपको प्रजा हुई। तो यहां पर जिस शब्द का वो प्रयोग कर रहे हैं वो है प्रजा प्रजा प्रजा। प्रजा शब्द का 3 बार प्रयोग हो रहा है। नंद महाराज से वसुदेव जी ये नहीं कह रहे कि अरे नंद महाराज आपका पुत्र कैसा है, आपका पुत्र कैसा है, आपका पुत्र कैसा है। अगर वो ऐसा कहते ये असत्य होता, क्योंकि वसुदेव जी जानते हैं कि नंद महाराज को पुत्र नहीं हुआ। क्या हुआ? पुत्री। लेकिन ये भी नहीं पूछ सकते आपकी पुत्री कैसी है, अरे पुत्री को तो ये लेके आ गए। तो इसलिए बड़ी दुविधा में थे, सत्य भी बोलना है, स्पष्ट भी बोलना है और उत्तर भी चाहिए। तो इसलिए पुत्र और पुत्री दोनों शब्द को नहीं प्रयोग किया, प्रजा जनरल, जो झूठ भी नहीं है, सत्य भी है, सार्थक भी है। तो इसलिए नंद महाराज के साथ व्यवहार करते समय वसुदेव जी बहुत सतर्कता बरते, बोले नंद महाराज डिवोटी हैं, डिवोटी के साथ सारा व्यवहार शत प्रतिशत सत्यसार होना चाहिए, हाफ ट्रूथ नहीं चलेगा। तो इसलिए वो बोले पुत्र नहीं, पुत्री नहीं, प्रजा। 3 बार प्रजा शब्द का प्रयोग हुआ है। दिष्ट्या भ्रात प्रवयस इदानीम अप्रजस्यते प्रजाशाय निवृत्तस्य प्रजा तत् समपद्यत। प्रजा 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 अर्थात वैष्णव व्यवहार में हमको 1% चांस भी नहीं लेना चाहिए कि किसी दूसरे वैष्णव को कुछ गलत संदेश मिले। तो इसलिए जो कोई भी राजनीति हो, डिप्लोमेसी हो, वो बाहर की दुनिया में हो सकता है चल जाए। राजमंत्री रामानंद व्यवहारे निपुण, राजप्रीति को ही द्रवैल प्रभुर मन। प्रभुपाद कहते रामानंद राय वॉज अ नेचुरल डिप्लोमेट, क्योंकि पॉलिटिशियन थे, वो जानते थे कैसे बात को घुमाना, कैसे बात को घुमा के दूसरों को फंसाना, ये सब उनके लिए नेचुरल था, पॉलिटिशियन थे। लेकिन भक्तों के संग में वो कभी पॉलिटिक्स नहीं किए। तो इसलिए प्रजाशाय निवृत्तस्य प्रजातत् समपद्यत। तो यहां पर आगे वर्णन आता है कि वसुदेव जी नंद महाराज को कहते हैं हाँ कि नैकत्र प्रिय सम्मास सुहृदाम चित्रकर्मणाम ओघेन व्यूहमानानाम प्लवानाम स्रोतसो यथा, कि देखिए हम लोगों का कितना बड़ा सौभाग्य है, जिनके साथ प्रेम होता है कई बार उनके साथ समय बिताने काल शक्ति नहीं देती, और जिनका चेहरा हम देख नहीं पाते उनके साथ समय बिताना पड़ता है। ये काल शक्ति कुछ भी कर सकती है, इसलिए प्रभो क्या करें, ये भगवान की इच्छा है। तो दोनों एकत्रित होकर मिलने के पश्चात अंत में वसुदेव जी चेतावनी देते हैं, हे नंद महाराज, मुझे कुछ अनिष्ट की आशंकाएं हो रही हैं, हो सकता है ब्रज गोकुल के ऊपर आक्रमण हो, सावधान रहना। और तब कंस ने अपने भेजे हुए प्रथम राक्षसी को भेजा, जिसका नाम था पूतना। पूतना अलग अलग बालकों को नष्ट करने के मूड में घूम रही थी। एक सुंदर यौवन संपन्न युवती के रूप में लक्ष्मी का रूप धारण करके वो आई, और ब्रजवासियों ने उसका स्वागत किया। यशोदा माई ने कृष्ण को बड़े मासूमियत से उनके हाथ में दे दिया। कृष्ण ने जैसे ही पूतना के विकराल मुख को देखा, कृष्ण ने अपने नेत्र बंद कर लिए। आचार्य बताते क्यों नेत्र बंद किए, क्योंकि कृष्ण देखना चाहते थे आंखें बंद करके कि पूतना मुझे दूध पिलाने आई है, लेकिन पूर्व काल में उसने कोई तो पुण्य किया होगा जिसके कारण मैं इसको कंसेशन देकर बचा लूं। वैसे तो शत प्रतिशत सब इसकी डकैती ही दिखती है, लेकिन फिर भी आंखें बंद कर करके देखता हूं कहीं कुछ क्रेडिट है क्या। तब तो भविष्य में लोग बोलेंगे क्षमा भी किया और इनका उद्धार भी किया, तो ऐसे ही बिना कारण के नहीं। तो भविष्य की पीढ़ियां कथा सुनते समय पूरी भ्रमित नहीं होंगी कि क्यों उद्धार कर दिया, इसलिए आंख बंद किया। फिर कहते हैं एक और कारण उन्होंने आंख बंद किया, वो सोच रहे थे कि पहली राक्षस को जो मार रहा हो महिला है, ये कैसे हो गया और आंखें बंद कर लिए। और तीसरा वो बोले अगर आंखें खोल के मारूंगा तो हो सकता है मरने के पहले ही, मारने के पहले ही उसका हृदय बदल जाए, लेकिन ये लीला समाप्त नहीं हो पाएगी इसलिए आंखें बंद ही रखते हैं। तो जो कुछ भी हो, जैसे ही आंखें बंद करके पूतना के गोद में कृष्ण गए, और जैसे ही कृष्ण का स्तनपान कराने लगी पूतना, क्षण भर में भगवान श्री कृष्ण ने उसके दूध के साथ साथ उसके प्राण को भी खींच लिया। और जैसे ही प्राण को खींचा, पूतना उच्च स्वर में चिल्लाने लगी। पूतना अपने सुंदर रूप को धारण नहीं कर पाई और पूतना अपना रूप परिवर्तित कर दिए, और ये जो रूप देख रहे हो उस रूप को धारण कर लिया, और कृष्ण ने उसको पूर्णतः समाप्त किया। लेकिन उसे भगवत धाम में माता का स्थान दिया। तो भगवान ने पूतना को माता का स्थान क्यों दिया? क्योंकि उन्होंने स्तनपान कराने का प्रयास किया। तो इसलिए यहां पर यह श्लोक सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, पदभ्याम भक्त हृदयस्ताभ्याम वंदाभ्याम लोक वंदितैहि अंगम यस्या समाक्रम्या भगवान अपि तत्स्तनम् यातु धान्यपि सा स्वर्गम् अवाप जननीम् गतिम् कृष्ण भुक्तस्तन क्षीराः किम् उगावो नु मातराः। सुखदेव गोस्वामी आश्चर्य कर रहे हैं कि जिस व्यक्ति ने कृष्ण को नष्ट करने के भाव में आए उनको कृष्ण ने मां का स्थान दे दिया, तो बाकी जो ब्रजवासी प्रेम से कृष्ण को भेंट समर्पित कर रहे हैं उनको क्या स्थान देंगे, उनको क्या स्थान मिलेगा, उनके लिए बचा ही क्या है, कृष्ण के झोली में है ही क्या। और जो हत्या करने आए उनको माता का स्थान दिया, तो फिर बाकी लोगों को क्या मिलेगा। अवाप जननीम गतिम कृष्ण भुक्त स्तन क्षीरा किम उ गावो नु मातरा। इसलिए पूतना किसका प्रतिनिधित्व करती है? ढोंगी गुरु, जो वेश बदल कर आए और ढोंग करे, गुरु होने का आडंबर रचाए, ऐसे ढोंगी गुरु से हमें बचना है। दूसरे भगवान श्री कृष्ण, उनका नामकरण से पूर्व एक सेरेमनी चल रहा था, और एक शकट के नीचे रखकर यशोदा माई चली गईं, और उस शकट के ऊपर हाथ गाड़ी बैलगाड़ी का जो गाड़ी था उसके ऊपर बहुत सारे बड़े बड़े गोरस रखे थे, दूध दही घी इत्यादि। तो श्री कृष्ण ने एक क्षण मात्र में अपने पग से उसको चाप दिया, और देखते ही देखते वो सारा हाथ गाड़ी धड़ाम से गिरा। वास्तव में वो एक असुर था जिसका नाम था शकटासुर। और कृष्ण ने सोचा कि मेरे ऊपर गोरस है, अरे हम अधोक्षज हैं, अधोक्षज के ऊपर इंद्रियां कैसे हो सकती हैं, मैं तो इंद्रियातीत हूं। इसलिए कृष्ण ने बड़े क्रोधावेश में आकर उसको नष्ट किया। शकटासुर हमारी बुरी आदतों के प्रतीक हैं, तो कई बार जब बुरी आदतें लगती हैं, उन बुरी आदतों को हम नहीं छोड़ पाते, और ये बुरी आदत एक बहुत बड़े भार की तरह हमारे सर पर बैठा रहता है, और इन आदतों से हम लोग छुटकारा नहीं प्राप्त कर पाते। एक बार मैं प्रोग्राम कर रहा था येरवाड़ा जेल में, पूना में, और येरवाड़ा जेल में अधिकांश जितने कैदी होते हैं सब या तो मर्डर वर्डर किए हुए या एक से बढ़कर एक गए गुजरे होते हैं। तो 400-500 कैदी एकत्रित बैठे थे प्रोग्राम में। जेल का प्रोग्राम मुझे अच्छा लगता है क्योंकि ऑडियंस गारंटीड होता है उसमें। तो लेक्चर दिया, तो लेक्चर के बाद एक कैदी ने हाथ उठाया, बोलता है मैं प्रश्न पूछना चाहता हूं। मैंने कहा पूछो। वो कहता नहीं, मैं स्टेज पे आके प्रश्न पूछूंगा। मैंने कमिश्नर साहब को पूछा कौन है ये, वो बोला ये 12 मर्डर किया इसने। तो मैंने कहा मैं 13वां होने वाला हूं क्या। उसने कहा चिंता मत करो, आने दो। स्टेज पे आया और आके पूछता है, ये हरे रामो कर रहे थे लेकिन शास्त्र में तो हरे राम बताया है। सब लोग तालियां बजाने लगे, सारे कैदी बोले हमारे बीच में पंडित है। कैदी हुआ तो क्या हुआ। तो मैंने कहा अगर कोई आपको आम देकर बोलेगा ये आम नहीं आमो है, खाओगे कि नहीं। बोला हाँ। वैसे ये हरिनाम के अंदर इतनी शक्ति है कि वो आपके हर प्रकार के विकृतियों को ठीक कर दे। तो कहने लगा वास्तव में हाँ, मेरे अंदर क्रोध का बड़ा प्रॉब्लम है और उस क्रोध के कारण मैं अपने आप को वशीभूत नहीं कर पाता, और क्रोध के कारण कितने लोगों की हत्या मैंने की। तो कई बार लोग कहते हैं कि हमारे आदतें ऐसी हैं कि उनको हम बदल नहीं पा रहे। तो ये आदतें इस शकट की भांति हम लोगों के नवजात श्रद्धा और कृष्ण भक्ति को समाप्त करने का प्रयास करेगा। जैसे इतने बड़े बड़े बर्तनों से लदा हुआ ये हाथ गाड़ी कृष्ण को समाप्त करने के लिए तैयार था। तत्पश्चात यशोदा माई कृष्ण के साथ खेल रही थी अपनी गोद में, तब कृष्ण का वजन अचानक बढ़ गया। यशोदा माई भ्रमित होकर कृष्ण को नीचे रख दी, और तब एक वहां पर तूफान के रूप में असुर आ गया जिसका नाम था तृणावर्त। और तृणावर्त ने कृष्ण को अपने हाथ में उठाया और उठा उठा कर ऊपर लेके गया। वो अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर रहा था। तो कृष्ण ने सोचा कोई बात नहीं, मैं भी पहले थोड़ा मेरी गो राउंड का मजा ले लूं। बोले नंद महाराज तो यहां कुछ प्ले एरिया बना नहीं रहे, तो मुझे मामा के द्वारा भेजे गए खिलौनों के साथ ही खेलना पड़ता है। तो कंस मामा के भेजे गए डिज्नीलैंड के कैरेक्टर तृणावर्त के ऊपर ऊपर चले गए, और ऊपर जाने के बाद कृष्ण ने अपना वजन बढ़ा दिया। और न केवल वजन बढ़ाया, यूं गला पकड़ लिया तृणावर्त का। तो कृष्ण का वजन बढ़ता हुआ देखकर तृणावर्त ने जबरदस्ती कृष्ण को उठा के फेंकने का प्रयास किया, लेकिन देखा ये हिल ही नहीं रहा है। और इतने विशाल और शक्तिशाली कृष्ण को अपने गले में अटका हुआ देखकर तृणावर्त कुछ नहीं कर पाए, निस्सहाय रूप से नीचे धरती की ओर आकर धड़ाम से गिरे, और उस चट्टान पर उनका पूरा शरीर गिरकर उनकी समाप्ति हो गई। सारे ब्रजवासी आए, देखे कृष्ण तृणावर्त के वक्षस्थल पर आराम से खेल रहे हैं, मानो वहीं पर कोई उनको सेट किया था और कृष्ण उस पे फिसल पट्टी खेल रहे हैं। किसी को मालूम ही नहीं हुआ कि तृणावर्त किसके प्रतीक हैं। तो कहा गया है कि रजसा तमसा व्रतम। जब तृणावर्त आए तो उन्होंने ऐसा बवंडर मचाया, ब्रज रज सबके आंखों में चला गया और उनके आंखें दृष्टि से ओझिल हो गई। तब तक कृष्ण सबके सामने थे, लेकिन जैसे तृणावर्त के द्वारा भेजा गया रज सबके आंखों में गया, उन उस रज के कारण रजों से उनकी दृष्टि समाप्त हो गई। उसी प्रकार भक्ति करते हुए भक्त के जीवन में जब रजोगुण का प्रादुर्भाव हो और अचानक काम वासना इत्यादि का प्रभाव हो, उस रजोगुण के कारण वो कृष्ण को नहीं देख पाता। और इसलिए तृणावर्त वैष्णव सत्संग में जो अलग अलग प्रकार के मत हैं, ओपिनियंस हैं, और उसके कारण जो झगड़े होते हैं, उसको प्रतिनिधित्व करते हैं, और इसके कारण हमारे आंखें कई बार बंद हो जाती, हम देख नहीं पाते। वैष्णव वही रहते हैं लेकिन कृष्ण गायब हो जाते हैं। आगे गर्गाचार्य वहां आते हैं, वसुदेव के द्वारा भेजे गए, और जैसे ही आते हैं नंद महाराज उनको स्वागत करके बिठाते हैं, और बिठाने के पश्चात गर्गाचार्य उनको कहते हैं कि देखिए, मैं नामकरण करने के लिए यहां पर आया हूं, और वास्तव में कौन भेजा? वसुदेव जी, क्योंकि क्षत्रियों का 100 दिन के अंदर नामकरण होना चाहिए। तो वसुदेव जी वहां बैठे हैं लेकिन मन में निरंतर कृष्ण का ही चिंतन चल रहा है। इसको कहते हैं कृष्णा कॉन्शियसनेस। कृष्णा कॉन्शियसनेस का अर्थ नहीं कि साथ में होना आवश्यक हो, कहीं पर भी रहो लेकिन मन में निरंतर विचार और चिंतन चलता रहे। तो जैसे ही गर्गाचार्य ने देखा, तो कई बार हमको लगता है ये सेवा अगर मुझे मिलेगी कितना अच्छा होगा, मजा आएगा, ये सेवा करने में मेरी इच्छा भी है और मेरा सामर्थ्य भी है। तो कई बार हमारा सामर्थ्य, हमारी इच्छा, हमारी निपुणता सब मैच करे तब सेवा में आनंद आता है। लेकिन वो सेवा सेवा के रूप में तब घोषित किया जाएगा जब कोई हमको बोले तुम ये करो। अगर कोई नहीं बोले ये करो और हम खुद ही उठा लें उसको, तो वो सेवा नहीं, वो कर्म होगा। इसलिए गर्गाचार्य वहां आने के बाद सबसे पहले कहते हैं कि आप चाहते हो कि मैं नामकरण करूं, लेकिन इसका परिणाम क्या होगा पहले ही जान लो। यदूनाम अहम आचार्य ख्यातश्च भुवि सर्वदा, सुतम मया संस्कृतस्ते तम मन्ये देवकी सुतम। कि वास्तव में आप मुझे चाहते हो कि मैं यहां पर नामकरण करूं, लेकिन मैं यादवों के आचार्य के रूप में प्रसिद्ध हूं, और अगर मैं इनका नामकरण किया कंस तक समाचार जाएगा, कंस को संशय होगा यादवों का आचार्य वहां पर क्यों गया, लगता है कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति वहां पर जन्मे है, शायद वही तो नहीं, और उस बच्चे को मारने के लिए कंस अपने आदमी भेजेगा। इसलिए मैं सेवा करूं मुझे तो बड़ा मजा आएगा, लेकिन मेरी सेवा करने से मिशन खतरे में होगा, इसलिए आप सोच लो मैं सेवा करूं कि न करूं। तो इसको कहते हैं पारदर्शी निर्मल चरित्र। जब व्यक्ति अपने भावनाओं को सामने सामने स्पष्ट रख देता है, वो इस बात से आसक्त होता है कि कृष्ण की सेवा भली भांति होनी चाहिए, इससे आसक्त नहीं होता कि ये सेवा मैं करूं, तब फिर यहां पर नंद महाराज कहते नहीं, हम लोग नामकरण यहां नहीं करेंगे, गोष्ठ में, गौशाला में जाकर करेंगे। जब गायें चली जाएं, केवल मैं रहूंगा, गर्गाचार्य आप रहोगे, और ये दो अबोध बालक जिनको कुछ समझता ही नहीं है, ये दो बच्चे रहेंगे, तो क्या हुआ, कैसे हुआ, किसी को समझेगा नहीं। अलक्षितोस्मिन रहसी मामकैर अपि गोव्रजे कुरु द्विजाति संस्कारम स्वस्ति वाचनम पूर्वकम। स्वस्ति वाचन आपसे कराना है, क्योंकि संत महापुरुष आए हैं तो उनके आशीर्वाद पाए बिना हमको नहीं छोड़ सकते। तो इसलिए जब साधु संघ हम कहते हैं, साधु संघ का अर्थ है कि साधुओं की वाणी को अपने जीवन में स्थान देना, ये साधु का परम आशीर्वाद है। तब इसको देखकर एवं संप्रार्थितो तो विप्र स्वचिकीर्षितम एव तत् चकार नामकरणम गूढ़ो रहसि बालयो हो। बारंबार इस प्रकार प्रार्थना किए जाने पर संप्रार्थित विप्र स्वचिकीर्षितम, उनकी इच्छा पहले से थी लेकिन फिर भी क्योंकि बारंबार प्रार्थना किया तो वो मान गए और कहा कि चलो अब हम करेंगे। तो इसलिए गर्गाचार्य ये नहीं सोच रहे थे कृष्ण का गुरु बनने का परम सौभाग्य हमें मिल रहा है, इसको नहीं छोड़े, नहीं तो और कोई गुरु बन जाए मेरा चांस चला जाएगा। वो कह रहे नहीं भैया, सोच लो, मैं गुरु बनूंगा, नामकरण करूंगा, प्रसिद्धि होगी, कंस के कान में खबर जाएगी, और फिर ये कृष्ण के जान के लिए खतरा सिद्ध हो सकता है, इसलिए पहले ही सोच लो मुझे गुरु बनाना है कि नहीं। इसलिए इस प्रकार की चेतना में कभी किसी प्रकार की समस्या नहीं हो सकती। आगे भगवान श्री कृष्ण अब लीला प्रसारण आरंभ करते हैं। और ब्रज में बाल लीलाएं कृष्ण आरंभ करते हैं। बाल लीलाओं में ब्रज के रज में कृष्ण लौटते हैं और कृष्ण और बलराम गोवत्स की पूंछ पकड़कर उनके द्वारा घसीटे हुए चलते हैं ब्रज के रज में। इसलिए बलराम जी का एक नाम है घसीटा राम, क्योंकि उनको घसीटा गया। भगवान वास्तव में ब्रज के रज में अपने भक्तों के चरणों के रज में लौटना चाहते हैं। कहते हैं कि इसमें मुझे सबसे अधिक आनंद आता है। हाँ, श्रुतिम अपरे स्मृतिम इतरे भारतम अन्ये भवंतु भवभीतम अहम यह नंदम वंदे यस्यालिंदे परम ब्रह्म। वो कहते हैं श्रुति ये कहे, स्मृति ये कहे, अन्य अन्य शास्त्र में जो भी वर्णन हो, मैं पूजा करता हूं नंदम वंदे, नंद महाराज की, जिसके कोर्टयार्ड में यस्य आलिंदे परम ब्रह्म, परम ब्रह्म रेंगते हुए चल रहे हैं। तो इसलिए भगवान श्री कृष्ण श्रृंगी अग्नि दमष्ट्री असि जला कंटकेभ्य क्रीड़ा परौ अति चलौ स्वसुतौ निषेधुम। कृष्ण, बाल कृष्ण, बाल गोपाल क्या क्या लीला करते थे? श्रृंगी तो कभी किसी के सींग पकड़ लेते थे, अग्नि सिगड़ी के अंदर अग्नि को देखकर उनको लगता था अरे क्या आकर्षक चीज है, जाके पकड़ो उसको, जलते हुए लकड़े या गोबर के कंड को पकड़ने भागते थे। दमष्ट्री वानर को पकड़ के ले आ जाते और वानर का मुंह खोलकर उसका दांत गिनती करने लगते। असी देखते बड़ा तलवार लटका है और उसके ऊपर सूर्य के प्रकाश चमकता, तो उनको लगता है ये क्या आकर्षक चीज है, भागते उस चाकू को पकड़ने के लिए। जल मटका को देखकर मटका का ढक्कन खोलकर अंदर झांक के देखते कितना पानी है। कंटकेभ्य और कंटक इत्यादि के ऊपर चलते हुए भागते थे। तो इस प्रकार यशोदा माई गोपियां निरंतर कृष्ण और बलराम को किसी न किसी आपातकालीन परिस्थिति से बचाने में लगे रहते। इसलिए गृहयानी न कर तुम, घर का कोई कार्य वो नहीं कर पाते थे, पूरा दिन उनका जाता था कृष्ण की चिंता में। तो इसलिए भागवत वर्णन करता है कि योगियों के समाधि की तुलना में कृष्ण के संबंध में निरंतर चिंता करना यह सर्वश्रेष्ठ समाधि है। और इसलिए प्रभुपाद कहते हैं द गोपीज वेर एक्सपीरियंसिंग द इक्वेनिमिटी इन द स्टेट ऑफ डिस्ट्रेस, एंग्जाइटी अबाउट कृष्णा इज द ग्रेटेस्ट इक्वेनिमिटी। तो इसलिए यहां पर अब ग्वाल बाल मित्र आकर यशोदा माई को कहते हैं कृष्ण ने मृद खाया मट्टी। यशोदा माई कृष्ण का मुख खोलती हैं और संपूर्ण ब्रह्मांड का दर्शन करती हैं। कृष्ण भी कहते हैं अरे क्या मैं मट्टी खाया और खाने को कुछ मिला नहीं क्या। अब सोचो ग्वाल बाल हमेशा बोलते रहते हैं मक्खन खाया, दूध खाया, दही खाया, यहां तक तो ठीक था। सोचो मेरे प्रति इतना द्वेष है ये लोगों को, मुझे बदनाम करने पर इतना तुले हुए हैं कि बोल रहे हैं अपने ही घर के आंगन से मट्टी खाया। आप ही सोचो यशोदा माई किस हद तक ये लोग मुझे बदनाम करने पे तुले हुए हैं। तो यशोदा माई ने कहा हाँ ये बात तो सही है, लेकिन फिर भी मैं देखना चाहती हूं। और निरीक्षण करने के लिए मुंह खोला तो अंदर संपूर्ण ब्रह्मांड का दर्शन किया। अहम ममासो पतरेश में स्तो व्रजेश्वर सकल वित्तपासति गोप्यश्च गोपा सहगोधनश्च मे यन माया कुमति समय मति। तो यशोदा माई कहती है अरे बारंबार मैं कृष्ण का संरक्षण करने का प्रयास कर रही हूं, लेकिन मैं समझ रही हूं कि वास्तव में ये कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम हैं और मैं इनको संरक्षण नहीं दे सकती, और मैं अपने आप को बहुत श्रेष्ठ मान रही थी लेकिन मैं तो तुच्छ हूं। न मैं रानी हूं, न ये संपत्ति हमारी है, न ये ग्वाल बाल हमारे हैं, न ये गाय हमारे हैं। और तब भगवान श्री कृष्ण के मन में चिंता हो गई कि अरे यशोदा माई क्या हमारी स्तुति करते हुए हमारी आरती उतारने लगेंगी क्या? एक व्यक्ति जो बार बार आत्मविश्वास के साथ हमको डांटती है, फटकारती है, पालन पोषण भरण करती है, वो भी पुजारी बन जाए तो फिर मर जाऊंगा। तो अचानक फिर कृष्ण ने यशोदा माई के इस भाव को आवृत कर दिया। और तब यहां आगे वर्णन आता है यशोदा माई फिर प्रवृद्ध स्नेह कललम हृदय आसीत यथा पुरा, कृष्ण को अपने गोद में बिठा ली, और बिठाने के पश्चात ये श्लोक श्रीमद् भागवत के दशम स्कंद का परिभाषा सूत्र श्लोक है। ये परिभाषा सूत्र श्लोक अर्थात उस श्लोक के आधार पर बाकी अन्य सारे श्लोक चलते हैं। त्रय्या च उपनिषद्भिश्च सांख्य योगैश्च सात्वतैः उपगेयमाना महात्म्यम् हरेर्सा अमन्यत पुत्र का हरिंसा अमन्यत आत्मजम्। तो चाहे सब शास्त्रों में कृष्ण की कैसी भी स्तुति की गई हो, लेकिन यशोदा माई ने कृष्ण को केवल अपना पुत्र का स्वरूप माना। तत्पश्चात दामोदर लीला, जिसके विषय में हम लोग विस्तृत वर्णन कर चुके हैं, और इस दामोदर लीला में वर्णन आ रहा है कि भगवान श्री कृष्ण ने यशोदा माई के परिश्रम को देखकर बंध गए। तो कृष्ण को बांध दिया, तब बलराम जी वहां घूमते हुए आए और कृष्ण को बंधन में देखकर बलराम जी उपहास करने लगे, अरे कृष्ण क्या करतूत तूने किए थे, इसका परिणाम मिल ही गया तुमको। कृष्ण बलराम जी को देखकर बोलते, अरे बड़े भैया होने के कारण आपका कर्तव्य बनता है कि आप मुझे छुटकारा दो, ये नहीं कि मेरा मजाक करो। तो बलराम जी अंदर घुसते हैं और कहते हैं, किसने कृष्ण को बांधा, किसने बांधा बताओ। यशोदा माई आती है, बोलते मैंने बांधा, बता क्या करेगा। बलराम जी कहते हैं, आप जानते नहीं कृष्ण कौन है। यशोदा माई पूछती, कौन है। बलराम जी कहते हैं, कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, राम नरसिंह वामन कूर्म मत्स्य ये सारे अवतार उनसे प्रकट हुए हैं। यशोदा माई छड़ी उठाई, बोले फिर तू कौन है बता। तो बलराम जी कहते हैं, वसुदेव संकर्षण प्रद्युम्न अनिरुद्ध ये सारे अवतार मुझसे प्रकट हुए हैं, मैं प्रथम विस्तारित अवतार हूं। यशोदा माई छड़ी उठाकर बोलती है, बलराम जी को सारे अवतारों को मेरे घर में जन्म लेना था क्या, और तुम आवाज उठाओगे तुमको भी बांध दूंगी। बलराम जी भागे भागे गए कृष्ण के पास, बोले कृष्ण जैसी करनी वैसी भरनी, इतना तुमने किया है लूटपाट, थोड़ा दिन बंधे रहो अच्छा ही रहेगा। तो दामोदर लीला में जब यशोदा माई ने वात्सल्य प्रेम से कृष्ण को बांध दिया, तो सांख्य प्रेम से वो रस्सी नहीं छूट सकती थी। इसलिए आगे यशोदा माई की महिमा का वर्णन करते हुए वर्ण यहां पर श्लोक आया है, नेमं विरिंचो न भवो न श्रीरपि अंगसं श्रयां प्रसादं लेभिरे गोपी यत्तत् प्राप विमुक्तिदात। भगवान श्री कृष्ण ने यशोदा माई को ऐसा आशीर्वाद दिया जो उन्होंने अपने पुत्र ब्रह्मा जी, हाँ, और अपने पोते शिव जी और अपनी पत्नी लक्ष्मी जी को नहीं दिया, वो यशोदा माई को दिया माता का स्थान। तत्पश्चात दामोदर जी सोचते हैं कि ऋषेर भगवत मुख्यस्य सत्यम कर्तुम वचो हरि जगाम शनकै तत्र यत्रास्ताम यमलार्जुनौ। मेरे भक्त नारद मुनि ने भविष्यवाणी की कि इन दो वृक्षों का उद्धार करना है, नलकूवर और मणिग्रीव। इसलिए दामोदर लीला करने के पीछे कई कारण थे, एक भक्ति की शक्ति सिद्ध करना, दूसरा यशोदा माई के गुणगान करना, और तीसरा भक्तों की वाणी की क्या शक्ति है इसको सिद्ध करना। अगर भक्तों ने कुछ इच्छा की, उस इच्छा को पूर्ण करने के लिए कृष्ण पूरे दुनिया को पलट पलट देंगे। इसलिए भक्तों की वाणी को बहुत गंभीरता पूर्वक स्वीकार करना चाहिए। नारद मुनि ने एक वचन कहे, कृष्ण की दिशा बदल गई और सीधा वो उखल लेके गए और जाकर उसको खींचने लगे। उखल और रस्सी दोनों में वार्तालाप होने लगा। उखल ने कहा, मेरा कितना सौभाग्य है कृष्ण के उदर में बंधा हूं। हाँ, रस्सी ने कहा। तो उखल ने कहा, देखो कृष्ण के चरणों का रज मुझे धीरे धीरे बीच बीच में स्पर्श होता है, मेरा कितना बड़ा सौभाग्य है। तो दोनों आपस में चर्चा करने लगे, फिर बाद में वो विचार करने लगे कि वास्तव में जो भी सौभाग्यशाली हो वो ठीक है, लेकिन दोनों को एकत्रित होकर नलकुवर और मणिग्रीव यमलार्जुन वृक्षों के उद्धार का कारण बनना पड़ेगा। तो कृष्ण कहते हैं अगर चाहे आप अपने व्यवहार में खल भी क्यों ना हो, अगर कोई खल भी हो, अयोग्य हो, दैवी योग्यताएं न भी हो, लेकिन जैसे उखल कृष्ण के पद चिन्हों में चलते हुए चला गया और कृष्ण से बंधा रहा, तो अगर आप हरिनाम संकीर्तन और श्रीमद् भागवत से बंधे रहोगे और महान आचार्यों के पद चिन्हों में चलते रहोगे, तो चाहे आप कितने ही बड़े खल क्यों न हो, आपको इस जगत के बद्ध जीवों को उद्धार करने की शक्ति प्राप्त हो जाती है। इसलिए प्रभुपाद जी ने कहा कि आप बहुत दीर्घ काल तक प्रतीक्षा मत करो, जैसे अवसर मिलता है प्रचार आरंभ कर दो, क्योंकि वो दिन कभी नहीं आएगा जब प्रचुर मात्रा में समय आपको मिलेगा। राधानाथ महाराज एक बार बेलगाम जा रहे थे प्रोग्राम के लिए, फ्लाइट में देखा महाराज जी ने कि उनका जो असिस्टेंट है सेक्रेटरी वो बहुत प्रसन्न लग रहा है। तो महाराज ने कह रहे बहुत खुश लग रहे हो, क्या बात है? बोले नहीं नहीं महाराज जी आप हैं वो। बोले नहीं मैं तो हमेशा रहता हूं लेकिन हमेशा इतने खुश नहीं लगते। बोले क्या करें आज इंडियन क्रिकेट टीम हमारे साथ है फ्लाइट में। तो भारत में 33 कोटि देवता तो पूजनीय है लेकिन ये 11 देवता विशेष रूप से पूजनीय है। तो जैसे ही फ्लाइट लैंड हुआ तो भक्त लोग हरिनाम के साथ खड़े थे वहां पर, क्रिकेट टीम को लगा उनके लिए खड़े हैं लेकिन एक भी गार्लैंड उनको मिला नहीं। फिर देखा किसके लिए खड़े हैं, फिर महाराज बाहर आए तो एक क्रिकेटर महाराज का सामान वामान उठा के लेके गया और बोलने लगा महाराज को मेरी भी इच्छा है भक्ति वक्ति करने की, भजन करने की, लेकिन क्या करे इतना बिजी रहता हूं समय नहीं मिलता, आशीर्वाद दें कि मुझे समय मिले। महाराज ने कहा जरूर आशीर्वाद देता हूं। 6 महीने में वो क्रिकेटर अजय जडेजा बैन हो गए क्रिकेट से लाइफ लॉन्ग। तो इसलिए आशीर्वाद लेने के पहले थोड़ा सावधान रहना, आशीर्वाद का परिणाम क्या होगा कोई भरोसा नहीं। इसलिए यहां पर कहा गया है कि जितना भी समय मिले, चाहे कितने भी आपके अंदर कमियां क्यों ना हो, उस मार्ग पे चलते चले जाओ। उस मार्ग पे चलोगे और आश्रय ग्रहण करोगे, उद्धार अवश्य होगा। आगे माता और कृष्ण और बलराम बड़े प्रेम से सेवा में लगे थे और आगे उन्होंने विचार किया कि अब हम गोकुल से वृंदावन आ जाएंगे और संपूर्ण समुदाय गोकुल से वृंदावन आ गया। पता है क्यों? सारे ब्रजवासियों ने क्या सोचा, पूतना शकटासुर वत्स अपने तृणावर्त ये सब असुर आकर आक्रमण कर रहे हैं कृष्ण के ऊपर, ये गोकुल कृष्ण के लिए सेफ नहीं है, कृष्ण का यहां पर भला नहीं होगा। और क्योंकि कृष्ण की सुरक्षा के ऊपर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है, इसलिए हम लोग अपने निजी पारिवारिक संपत्ति को यहीं पर त्याग कर यहां से निकलेंगे जिससे कि कृष्ण सुरक्षित रहे। कृष्ण को केंद्र बनाकर हम लोग अपना डिसीशन बदलेंगे। ऐसा नहीं कि हमारा डिसीशन निर्धारित करके कृष्ण को कहेंगे तू बदल। तो ये वृंदावन है, वृंदावन अर्थात कृष्ण और कृष्ण के वैष्णव भक्त और गुरुजनों के आदेश और इच्छा के अनुसार हम सभी अपनी इच्छा बदलने के लिए तैयार हो जाते हैं। ये नहीं कि कृष्ण और वैष्णवों को बार बार प्रश्न पूछते रहें, आप ऐसा क्यों कर रहे हो, आप वैसा क्यों कर रहे हो। ये प्रश्न पूछना ज्ञान मार्ग के अंतर्गत उचित है। जो भक्ति मार्ग में आ गया और भक्तों का वेश धारण कर लिया लेकिन भक्ति तत्व क्या है नहीं समझा, वही व्यक्ति ऐसा प्रश्न करता रहेगा। ऐसा चुनौतीपूर्ण व्यवहार ये भक्ति के लक्षण नहीं है, वृंदावन के लक्षण नहीं है। इसलिए यहां पर सारे ब्रजवासियों ने सोचा, प्रॉब्लम तो नंद महाराज और यशोदा के बेटे का है ना, ऐसा करते हैं हम, बोलते हैं उन दोनों को, अपने बच्चे को लेकर आप यहां से निकल चलो। जैसे ही कृष्ण और बलराम और यशोदा और नंद महाराज वृंदावन से चले जाएंगे, गोकुल से चले जाएंगे, गोकुल शांत हो जाएगा। तो इसलिए भक्ति का मूल अर्थ है निस्वार्थ सेवा भाव। और जब इस बात को कोई समझेगा नहीं तो वो वास्तव में गलत दिशा में चला जाएगा। तत्पश्चात कृष्ण और बलराम गोवत्सों को संभालना आरंभ करते हैं और नंद महाराज ने यह सोचा, कृष्ण और बलराम को शिक्षा पाने के लिए साक्षात इनका देखभाल करना आवश्यक है। तत्पश्चात वहां पर उनके बीचों बीच एक असुर का रूप धारण करके, वत्स का रूप धारण करके आ गए वहां बकासुर। एक बीच में वत्सासुर का वर्णन शायद नहीं हुआ, एक वत्सासुर भी आता है, वो शायद छूट गया, लेकिन हाँ यहां पर इसी में है वत्सासुर और बकासुर, ठीक दोनों है। तो वत्स के रूप में वो असुर आए और कृष्ण ने उनको पहचान लिया और उठा उठा के पटक दिया, समाप्त कर दिया। सरस्वती ठाकुर डिटेल्ड परपोर्ट इसके ऊपर लिखे हैं, वत्सासुर के ऊपर, हाँ, बॉयश बॉयश मेंटेलिटी ऑफ एंजॉयमेंट। अगर हमको लगे कि हमारा यौवन हमारे भोग के लिए है, इंद्र तृप्ति के लिए है, जैसे आप गोवत्सों को जाके देखोगे तो चंचल घूमते रहेंगे यहां से वहां, वहां से यहां। अगर अपने मनमानी के अनुसार हम कार्य करें और हमें लगे कि अनुशासन अनुशासन क्या है, ये इस्कॉन वाले बहुत सारा रूल्स एंड रेगुलेशंस डाल देते हैं, हम तो स्वच्छंद विचरण करना चाहते हैं बछड़े की तरह, कैसे बछड़ा उछलता रहता है वैसे हम भी उछलना चाहते हैं। तो ये वत्सासुर है। और बकासुर जो बक के रूप में आए वो भी काम वासना के प्रतीक, और कृष्ण उनके अंदर प्रवेश करके उनके अपने भुजाओं से कृष्ण ने उनके दोनों बीक्स को समाप्त कर दिया और उनको वहीं पर मार डाले। और तब पश्चात अघासुर वहां आए, अघासुर के उदर के भीतर सारे ग्वाल बाल मित्र चले गए, अघासुर प्रतीक्षा कर रहे थे कि कृष्ण भी अंदर आएंगे। कृष्ण अंदर प्रवेश किए और अंदर प्रवेश करने के पश्चात कृष्ण ने अपना आकार बढ़ाना आरंभ किया और कृष्ण ने क्षण भर में आकार बढ़ाकर उस अघासुर की मृत्यु के कारण बने, अघासुर समाप्त हो गए। अघासुर के नाश का समाचार जब स्वर्गलोक में गया तो स्वर्गलोक में ब्रह्मा जी इस बात को सुने कि एक सामान्य ग्वाल बाल ने किस प्रकार अघासुर की मृत्यु के कारण मने, तब ब्रह्मा जी ने उन गायों को और गोवत्सों को चुरा लिया। और तब कृष्ण देखे कि सारे गाय गोवत्स और मेरे ग्वाल बाल मित्र चुरा लिए गए। कृष्ण ने तुरंत ब्रह्मा जी के इस उत्पात को देखकर स्वयं विस्तारित कर लिया और एक एक गाय और गोवत्स कृष्ण ने ही वही रूप धारण कर लिया। एक वर्ष तक गायों से वो गोवत्स के रूप में कृष्ण दूध पी रहे थे और ग्वालबाल के रूप में कृष्ण माताओं से स्तनपान कर रहे थे। और जब एक वर्ष के पश्चात बलराम जी को शंका हुई, कृष्ण से पूछा, कृष्ण ने कहा हां मैं ही हूं, तब जाकर बलराम जी देखे कि ब्रह्मा जी देखना चाह रहे थे कि एक वर्ष के बाद क्या उत्पात मची है, आके देखा तो पूरे वृंदावन में सारे ग्वाल बाल सारे गोवत्स यथारूप हैं। ब्रह्मा जी देखे यहां पर भी हैं और मैंने जहां छुपाया वहां पर भी हैं। ब्रह्मा जी भ्रमित हो गए और भ्रमित होकर कृष्ण के चरणों में प्रार्थना करने लगे। हाँ क्या कहते हैं, श्री ब्रह्म उवाच नौमीड्यते ब्रह्मपुषे तडितंबराय गुंजावतांश परिपीच्छलसन्मुखाय वन्य सृजे कवल वेत्र विषाण वेणु लक्ष्मश्रिये मृदुपदे पशुपंगजाय। ब्रह्मा जी कहते हैं भगवान आपके साथ मैंने छल किया, मेरी गलती है लेकिन आपकी भी गलती है। भगवान बोलते अरे चोरी ऊपर से सीना चोरी, मुझे गालियां दे रहा है। ब्रह्मा जी कहते हैं क्या करें, इतने शक्तिशाली व्यक्ति पूर्ण पुरुषोत्तम होते हुए भी सामान्य बालक की तरह घूमोगे तो हम भ्रमित नहीं होंगे तो क्या होंगे। तो कहते हैं ब्रजवासियों का कितना सौभाग्य है। अहो भाग्यम अहो भाग्यम नंद गोप ब्रजो कसाम यन मित्रम परमानंदम पूर्णम ब्रह्म सनातनम। तब भगवान तालवन में प्रवेश करते हैं और तालवन में प्रवेश करने के पश्चात सारे ग्वाल बाल मित्र कहते हैं हमें कुछ ताल फल ला के दो। कृष्ण सोचते हैं कि भाई इतने समय मैंने कई असुरों का विध्वंस किया, अभी तक बलराम जी ने अकाउंट नहीं खोला। और फिर जब सारे फलों को तोड़ने लगे तो धेनुकासुर नाम का असुर भागा भागा आया, बलराम जी ने उसको चरणों तले उठाकर पटक दिया और सारे ताल वृक्ष गिर गए। देखते ही देखते सारे गधों को कृष्ण और बलराम ने समाप्त कर दिया। धेनुका मिथ्या अभिमान का प्रतीक है, मैं और मेरा, ये मेरा वन है, मेरे अनुमति के बिना कोई यहां पर प्रवेश नहीं कर सकता। तत्पश्चात वहां यमुना के ही एक सरोवर में कालिया रहते थे, अपने विषैले तत्व से उन्होंने उस तालाब को प्रदूषित कर दिया था। कृष्ण उस कालिया हृदय में प्रवेश किए, छलांग लगाकर कालिया के हजारों फनों के ऊपर चढ़ गए और वो नृत्य आरंभ करने वाले थे लेकिन नृत्य आरंभ नहीं किए क्योंकि सारे ब्रजवासी वहां आ गए लेकिन कृष्ण प्रतीक्षा कर रहे थे कब राधा रानी आएगी। राधा रानी आने के बाद कृष्ण ने अपना नृत्य आरंभ किया और नृत्य क्या किया, कालिया का सर पटक पटक के पीट डाला और कालिया के मुख से सारा विष बाहर निकल आया। और सारा विष कालिया का बाहर निकला तब उनके सारे जो पत्नियां थीं वो कृष्ण से प्रार्थना करने लगी। हाँ, और वो कहने लगी कि हे प्रभो आप हमारे पति के ऊपर क्यों इतनी कृपा दिखाए। हाँ, क्योंकि दीर्घकालीन तपस्या के पश्चात किसी को आपके चरणों का रज प्राप्त होता है, वो कैसे हमारे पति को प्राप्त हो गया। तो कालिया का पिछला जीवन बताया है कि वास्तव में गरुड़देव जब एक मछलियां खाने वहां उस सरोवर में आते थे तो वहां की मछलियों के नेता ने जाकर शौबरी मुनि को कंप्लेंट किया कि गरुड़ बार बार आक्रमण करते हैं, उनको उनसे बचाओ। तो शौबरी मुनि को सोच समझ के काम करना चाहिए, वो बोले नहीं नहीं हम इनको आश्रय देंगे भरत महाराज जैसे ही, आई विल बी योर सेवियर, मैं तुमको बचाऊंगा। कैसे, गरुड़ से, और गरुड़ को अभिशाप दे दिया यहां प्रवेश करोगे नष्ट हो जाओगे। तो गरुड़ एक वैष्णव के प्रति अपराध करने के कारण शौबरी ऋषि का पतन हुआ, अभिशाप के कारण गरुड़ वहां आना बंद किए, गरुड़ आना बंद किए तो कालिया का साहस आ गया, वो अंदर घुसा तो सारे जितने मछली थे एक साथ वन शॉट मारे गए। गरुड़ तो बीच बीच में कोटा सिस्टम में खाते थे, यहां पर तो कालिया के आक्रमण से सब झुलस गए। तो इसलिए मैं कह रहा था कि कई बार बिना अधिकार के हम कोई सेवा करने जाएं और किसी का उद्धार करने जाएं, पूर्वी समस्या से बड़ी समस्या हो जाती है। कालिया द्वेष के प्रतीक है और जब हम हरिनाम लें तो हरिनाम हमारे जिह्वा पर तांडव करते हुए अंदर के द्वेष को बाहर निकालेगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तत्पश्चात प्रलंबासुर ग्वालबाल मित्र का रूप धारण करके बलराम जी को मारने का प्रयास किए। बलराम जी उनके कंधे पर बैठे हुए बलराम जी ने प्रलंबासुर के सर पर दे मारा, क्षण भर में विशालकाय प्रलंबासुर गिर गए। प्रलंबासुर भी इस प्रकार के सूक्ष्म मैथुन के प्रतीक हैं और दो राक्षस धेनुका और प्रलंबासुर दोनों का वध साधना भक्ति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है समझना, क्योंकि बाकी अनर्थों को कृष्ण स्वयं समाप्त कर देंगे, लेकिन मिथ्या अहंकार स्थूल और सूक्ष्म अहंकार को नष्ट करने के लिए बलराम जी अर्थात गुरु की सेवा और वैष्णवों की सेवा बहुत आवश्यक है, तब जाकर इस मिथ्या अभिमान से मुक्त हो सकते हैं। उसी रात्रि को जब वो लोग सो रहे थे, अचानक चारों दिशाओं में एक दावाग्नि आ गई, और उस दावाग्नि को देखकर कृष्ण ने अपने सब भक्तों को कहा अपने आंखें बंद करो, और आंखें बंद करने पर कृष्ण ने उसको पी गए दावानल पान। दावानल क्या है? वैष्णव समुदाय में कलह मतभेद, जब वैष्णव समुदाय में तू तू मैं आरंभ हो जाता है तो उस दावाग्नि से कृष्ण हमको बचाएंगे जब उनसे प्रार्थना करेंगे। तत्पश्चात वृंदावन के वर्षा ऋतु और शरद ऋतु का वर्णन आता है, और कहा गया है गिरेयो वर्ष धारा भी हन्यमाना न विव्युतु अभिभूयमाना व्यसन यथा अधोक्ष चेतसा। जैसे वर्षा ऋतु में पर्वती चट्टान पर वर्षा गिरे तो चट्टान को शुद्ध कर दे, वैसे ही जब हमारे भक्तों भक्तों के जीवन में, भक्ति के जीवन में जब समस्याओं की मूसलाधार वर्षा होती है, समझना चाहिए वो हमें शुद्ध करने के लिए है। फिर भगवान श्री कृष्ण वेणु वादन कर रहे थे, उसको देखकर गोपियों ने वेणु गीत गाया, और वेणु गीत में भगवान श्री कृष्ण के सौंदर्य का वर्णन करते हुए कहती हैं गोपियां, बरहा पीड़म नटवर वपु कर्णयो कर्णिकारम। बिभ्रत्वासत् कनक कपिशं वैजयन्तीं च मालाम्, रंध्रान वेणुर अधर सुधया पूरयंगी गोप वृंदई। वृंदारण्यम स्वपद रमणम प्राविशद गीत कीर्ति। तत्पश्चात गोपियों का वस्त्र हरण लीला, कृष्ण ने कहा कि अगर आप मेरा आश्रय चाहते हो तो हर प्रकार के मिथ्या अभिमान और अहंकार से मुक्त होना है। फिर भगवान श्री कृष्ण ब्रज के वृक्षों की स्तुति करते हैं, पश्चदैतान महाभागान परस्य ऐकांत जीवितान वात वर्ष आतप हिमान सहंतो वारयन्ति न। ब्रज के वृक्ष कितने कृपालु हैं, दयालु हैं, दूसरों का उद्धार करते हैं, सेवा करते हैं, स्वयं कष्ट झेलते हैं, दूसरों को कष्ट से संरक्षण देते हैं, और इसलिए ये जीवन की सफलता है, एतावत् जन्म साफल्यम देहिनाम इह देहिषु। द्विज पत्नी लीला ब्राह्मणों के पास जाकर प्रार्थना करते हैं, कृपा करके हमें कुछ भोग की सामग्री दीजिए। ब्राह्मण कहते हैं यज्ञ का समय नहीं हुआ। कृष्ण बलराम ग्वाल बाल मित्रों को उनकी पत्नियों के पास भेजते हैं, चतुर्विदम बहुगुणम अन्नम आदाय भाजने अभिशस्रु मुदम सर्वा समुद्रम इव निम्नगा। सारे भांड को ले लेकर भर कर उसको लेके चलते हैं, कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने मांग की उसको अवश्य पूर्ण करेंगे। कृष्ण कहते हैं कृपा करके आप जाइए अपने घरों पर, श्रवणात कीर्तनात ध्यानात मयि भावनो कीर्तनात न तथा सन्निकर्षि न प्रतियाततो गृहान निषिद्यमाना पतिभि भ्रातृभि बन्धुभि सह भगवती उत्तम श्लोक दीर्घश्रुत धृताशयः। बहुत सारे लोगों ने सामाजिक प्रतिबंध लगाने के प्रयास किए, ब्राह्मण पत्नियों को कृष्ण के निकट जाने से रोका, लेकिन दीर्घ श्रुत धृताशया दीर्घ काल तक श्रवण किया था इसलिए उनके हृदय में यह आत्मविश्वास था और वो पहुंच गए और कृष्ण की कृपा को प्राप्त कर गए। तत्पश्चात गोवर्धन लीला आती है जिसके विषय में अभी हम लोग कुछ समय के बाद चर्चा करेंगे, और इसलिए गोवर्धन लीला को अभी मैं वर्णन नहीं करूंगा। कृष्ण ने गोवर्धन को उठाया, फिर इंद्र को अभिषेक कराया। कृष्ण का अभिषेक इंद्रदेव ने ऐरावत के माध्यम से कराया, और तत्पश्चात वरुण देव को द्वादशी के दिन एक सर्प ने वरुण वरुण के एक सेवक ने उनको पकड़ कर लेके गए और उनको लगा कि ये गलती की, गलत समय पर उन्होंने स्नान किया। लेकिन आचार्य बताते हैं कि वरुण के सेवक को समझना चाहिए कि नंद महाराज सामान्य व्यक्ति नहीं, भगवान के पिता हैं। और जीव गोस्वामी बताते हैं कि वास्तव में जिस क्षण में स्नान किया वो अपशकुन नहीं था, उचित था, वो एक विशेष प्रकार का द्वादशी था। तत्पश्चात यहां वर्णन आ रहा है गोपियों का, नित्य सिद्ध गोपी, साधना सिद्ध गोपी, और जो गोपियां नहीं जा पाई कृष्ण के निकट, वो कृष्ण का निरंतर चिंतन करते हुए उन्होंने अपना जीवन सफल किया। गोपियां कृष्ण के साथ निरंतर सेवा करती रहीं और गोपियों ने ये बताया कि वो नृत्य, जिस नृत्य में भगवान श्री कृष्ण की इच्छा के साथ साथ अगर हमारी इच्छा भी नृत्य करे, उस लीला को कहते हैं रास लीला। अगर भगवान अपना दायां पैर जहां डालें तो उस चाप के साथ हम भी उसी दिशा में पैर रखें, बाईं ओर नृत्य करें तो हम भी बाईं ओर नृत्य करें, भगवान की इच्छा के साथ तालमेल रखने की शक्ति और सामर्थ्य को कहते हैं रासलीला। तो इसलिए भगवान और वैष्णवों की इच्छा के साथ कदम से कदम मिलाना, ये वृंदावन है। तो इसलिए इस बात को लोग सुन तो लेते हैं लेकिन समझने के लिए जीवन भर का कसरत लगेगा। तो इसलिए हम लोगों के इस्कॉन में बहुत बड़ी आदत है प्रश्न पूछना, ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों कर रहे हैं, इन्होंने ऐसा क्यों किया, राधानाथ स्वामी ऐसा क्यों कर रहे हैं। अरे भैया, रास लीला का अर्थ है कि जैसा हो रहा है उसके साथ नृत्य करें, उस इच्छा में इच्छा बटाए, इच्छा मिलाए। ये नहीं कि उनको कहे आप ऐसा मत नृत्य कीजिए, आप ऐसा करो। तो गोपियों ने कभी कृष्ण से प्रश्न नहीं पूछा, रात्रि को ही क्यों आप हमको बुलाते हो, थोड़ा सुबह के समय भी हो सकता है, थोड़ा दूसरा शिफ्ट में करते हैं, रात को सो जाने दो, फ्रेश हो जाएंगे फिर नाचेंगे। तो इसलिए यहां पर 31वें श्लोक, 31वें अध्याय के 9वां श्लोक, तव कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम कल्मषापहम्। बोलो। श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जना। तो ये रासलीला चलती चली गई और तत्पश्चात शंखाचूड़ ने सब गोपियों को आक्रमण करने का प्रयास किया, कृष्ण ने उनको समाप्त कर दिया और उनकी मणि छीन ली और उस मणि को लेकर राधा रानी को दे दिया। वही मणि बन गई शमंतक मणि। तो शंखाचूड़ भी ऐसे अवैध स्त्री संघ का एक उदाहरण प्रस्तुत करते हैं जिससे हमें बचना है। तत्पश्चात गोपियों ने युगल गीत गाया, भगवान श्री कृष्ण के लीलाओं का वर्णन किया और फिर अरिष्टासुर आए और अरिष्टासुर भगवान पर आक्रमण किए और कृष्ण ने उस अरिष्टासुर का वध किया और इस अरिष्टासुर के वध के कारण बाद में राधा रानी और गोपियों ने मांग की और तब जाकर राधा कुंड और श्याम कुंड तैयार हुआ। तब नारद मुनि घूमते हुए गए कंस के पास और कहने लगे, अब कंस तुमको बता ही देता हूं कि तुम्हारे मारने वाला व्यक्ति कृष्ण कौन है। इतना सब लीला होने के बाद नारद मुनि ने बता दिया, क्योंकि नारद मुनि को लगा समय बीतता जा रहा है, कृष्ण तो लीला में लगे हुए हैं, लीला चलती रहेगी, लेकिन कृष्ण के मनोरंजन का समय हो गया, अभी बिजनेस का टाइम आ गया है। अब तब जाकर कंस ने अपना लास्ट एक असुर भेजा, केशी और व्योमासुर। और केशी घोड़े के रूप में आकर आक्रमण किए और कृष्ण ने उनका विध्वंस किया। और तब यहां पर कंस ने अक्रूर जी को भेजा और अक्रूर जी जैसे ही कृष्ण के पाद चिन्ह देखते हैं, देह भृताम इयान अर्थो हित्वा दम्बम भियम शुचम संदेशात्यो हरेर्लिंग दर्शन श्रवणादि भी, वो सोचते हैं कि मनुष्य का देह मैंने इतना भारी इसको धारण किया है इसी दिन के लिए, इयान अर्थो हित्वा दम्बम भियम शुचम, भय शोक इत्यादि को त्याग कर मैं वास्तव में आपके चरणों का आश्रय ले सकूं। और सारे गोपियां देखे कि कृष्ण को लेकर अक्रूर जी जा रहे हैं तो सारी गोपियां बाहर आ गईं। एवं ब्रुहाणा विरहातुरा वृषम ब्रजस्त्रिय कृष्ण विषक्त लालसा विस्तृज लज्जा रुदुस्म सुस्मरम गोविंद दामोदर माधवेति। ये कृष्ण को लेकर अक्रूर जी जा रहे हैं और अक्रूर जी कितने क्रूर हैं, और गोपियों ने अक्रूर जी के प्रति कुछ इस प्रकार से अभिशाप दे दिया। और क्योंकि अक्रूर जी ने गोपियों का श्राप खाया इसलिए अक्रूर जी भविष्य में चलकर शामंतक मणि कांड में फंसे। और तत्पश्चात अक्रूर जी प्रार्थना करते हैं और कृष्ण और बलराम मथुरा में प्रवेश करते हैं। कृष्ण एक धोबी की हत्या करते हैं और माला माल्यकार को आशीर्वाद देकर सुदामा जी को और माल्यकार दोनों को आशीर्वाद देते हैं। फिर कृष्ण आते हैं कुब्जा के पास और कुब्जा के तिरछे शरीर को सीधा करके उनको शुद्ध करते हैं, जो पिछले जन्म में शूर्पणखा थी। शूर्पणखा के रूप में रावण की बहन के रूप में रामचंद्र ने उसको कृपा नहीं की, लेकिन कृष्ण ज्यादा कृपालु हैं। और तत्पश्चात वो इस अंदर विशाल प्रासाद जो बनाया था उसमें प्रवेश किए। कुवलपीड नाम के हाथी ने आक्रमण किया, कृष्ण ने नन्हे से रूप में भी कुवलिया पीड़ की हत्या कर दी। और देखते ही देखते चाणूर और मुष्टिक उनके सामने आ गए। और जैसे ही कृष्ण उस रंग क्षेत्र में प्रवेश करते हैं, वहां उपस्थित सभी लोगों ने कृष्ण के सुंदर रूप को प्रवेश करते हुए देखा। और इस श्लोक में भक्त के जीवन में 12 रस जो आते हैं उनका वर्णन आ रहा है। मल्ला नाम शनिर्नृणाम नरवरा स्त्री नाम स्मरो मूर्तिमान। गोपानां स्वजनो सतां क्षितिभुजां शास्ता स्वपित्रो शिशु। मृत्युर्भोजपते विराड विदुषां तत्त्वं परं योगिनां। वृष्णीनां परदेवतेति विदितो रंगं गत साग्रज। इस प्रकार चाणूर और मुष्टिक ने कृष्ण और बलराम के साथ युद्ध किया। जितने रंग क्षेत्र में सभासद बैठे थे सबको लग रहा था कितना बड़ा अन्याय है, कितने विशालकाय मल्ल और एक कहां मासूम 10-11 वर्ष के बालक। लेकिन कृष्ण ने अपनी शक्ति से बलिष्ठ भुजाओं से उनको समाप्त कर दिया। और गोपियां सोच रही थी कि क्या भगवान श्री कृष्ण का रूप है, और वो अपने आप को बड़ा सौभाग्यशाली मान रही थी। और फिर कंस को कृष्ण ने उस रंग क्षेत्र के मैदान में नीचे उतारा और कंस के वक्षस्थल पे चढ़कर कृष्ण ने अपने मुष्टि प्रहार से कंस का विध्वंस किया और कंस का पराजय हुआ और कृष्ण विजयी हुए। कृष्ण भगवान की। वसुदेव और देवकी छूट गए, लेकिन वो सोच रहे थे कि अब तक नंद महाराज ने कृष्ण को शिक्षा दी तो केवल गोचारण की, लेकिन एक्चुअल एजुकेशन डिग्री नहीं मिला है उनको, तो इसलिए उनको भेज दिया संदीपनी मुनि के आश्रम में। और संदीपनी मुनि के पुत्र को वो वहां से बचा के ले आए समुद्र से। फिर यहां पर उद्धव जी को भेजते हैं और भ्रमर गीत राधा रानी सुनाती हैं और कृष्ण कुब्ज और अक्रूर के घर में जाकर उनको संतुष्ट करते हैं मथुरा में, और अक्रूर जी को सेवा में नियोजित करते हैं, और अक्रूर जी को सबसे पहली सेवा देते हैं, जाके हस्तिनापुर में जाइए, क्योंकि अब कृष्ण धीरे धीरे बिजनेस लाइक मूड में आ रहे हैं। तो ये जो धृतराष्ट्र वाला ये स्लाइड दिख रहा है, ये शुरुआत है। परित्राणाय साधु नाम विनाशाय च दुष्कृताम। तो अभी तक जो कंस ने भेजे थे वो सब खिलौने थे, लेकिन अभी जो बड़े बड़े असुर बैठे हैं उनको विध्वंस करने की योजना भगवान आरंभ करते हैं। और फिर जरासंध का आक्रमण हुआ, जरासंध ने आक्रमण किया, कृष्ण और बलराम ने जरासंध के कई कई अक्षयहिनी सेनाओं को क्षण भर में समाप्त कर दिया, हरेक घोड़े तक को भी समाप्त किया, और जरासंध को भी बलराम मारने वाले थे गदा से। कृष्ण ने कहा रुको रुको रुको, इसको छोड़ो, और लोगों को पकड़ के लाएगा ये। तो हम लोगों का जो मिशन है विनाशाय च दुष्कृताम, ये जरासंध से अच्छा प्रीचर दूसरा मिलेगा नहीं। हम लोगों को यहां वहां सबको ढूंढने की आवश्यकता नहीं, एक जगह बैठे रहेंगे, जमा करके लेके आए गए। 17 बार जरासंध प्रीचिंग कर करके ले आए असुरों को, कृष्ण और बलराम एक ही स्थान पे बैठ के समाप्त किए सबको। और फिर ऐसा हुआ कि कल यावन ने आक्रमण किया और कृष्ण काल यावन से भागते हुए गए, और सोचा कि अब एक ओर से जरासंध, दूसरी ओर से काल यावन भागते हुए गए, और एक उन्होंने गुफा में प्रवेश किया, अंदर मुचुकुंद सो रहे थे, उनको पता नहीं था कौन, और काल यवन भागे भागे आए, और काल यवन को लगा यही कृष्ण है और सीधा लात मारा। वो मुचुकुंद थे, मुचुकुंद के नेत्र खुले, भस्मीभूत हो गए काल यवन, क्योंकि मुचुकुंद ने देवताओं के लिए युद्ध किए थे, और देवता जब प्रसन्न होकर बोले कुछ वरदान मांगो, बोले मैं बहुत थक गया हूं, सोना चाहता हूं, नींद में कोई उठाएगा भस्मीभूत कर दूंगा, ये वरदान दे दिया उनको। हमको भी सुबह कभी उठाता है तो लगता है भस्म कर दें। तो ये भावना जो है ये मुचुकुंद की, तो मुचुकुंद ने उनको भस्म कर दिया। फिर कृष्ण आ गए, कृष्ण को देखकर मुचुकुंद बड़े प्रसन्न हुए। निर्जित्य दिक्चक्रम अभूत विग्रह वरासनस्थम समराज वंदित, इस प्रकार उनकी स्तुति करने लगे, प्रभो आपके शक्ति को हम पहचान नहीं पाए। तो जरासंध ने देखा कि गुफा के अंदर घुसा है, चलो इसको यहीं समाप्त करते हैं, और चारों दिशाओं से उस प्रश्रवण पर्वत पे आग लगा दी। लेकिन और कृष्ण और बलराम ऊपर से सीधा छलांग लगाए, बॉलीवुड के स्टंट भी इसके सामने फीके पड़ जाएंगे, कृष्ण और बलराम जैसे दिखाया। अब कृष्ण ने विचार किया कि गोपियों के साथ तो बहुत मजा कर लिया, लेकिन अब लाइफ में सेटल डाउन होना है। तो फिर कृष्ण ने सोचा कि चलो अब रुक्मिणी देवी के साथ विवाह करते हैं। रुक्मिणी देवी ने कृष्ण को एक प्रेम पत्र भेजा, श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर छिन्वताम ते निर्विश्य कर्ण विवरे हरतोंग तापम, प्रभो आपके सौंदर्य का वर्णन सुनकर मेरा अंगताप समाप्त हो गया, कृपा करके मुझे अपने पति के रूप में स्वीकार कीजिए। और रुक्मिणी देवी दीर्घकालीन प्रतीक्षा कर रही थी, लेकिन कृष्ण संपूर्ण द्वारका की सेना के साथ वहां पहुंच गए। शिशुपाल और पूरी सेना को लग रहा था कि रुक्मिणी हमारी होंगी, देखते ही देखते कृष्ण ने रुक्मिणी को अपहरण किया और अपने रथ में रखकर प्रहस्य भगवान चाह मास्म भैर वाम लोचने, हाँ, जैसे ही कृष्ण ने रुक्मिणी देवी को उठा के अपने रथ में रखा और उनके हाथ में उस लगाम को दे दिया, रुक्मिणी देवी घबरा गए और कृष्ण कहते हैं अरे चिंता मत करो, हाँ विनंशति अधुना तावत, बहुत शीघ्र ये सारे शिशुपाल की सेनाएं समाप्त हो जाएंगी, किसके द्वारा, तावक शात्रवम बलम, आपकी सेनाएं इनको समाप्त करेंगी। सेनाएं कहां की थी, द्वारका की थी, द्वारका की सेनाओं को कृष्ण तुरंत ट्रांसफर कर देते हैं, रुक्मिणी को कहते हैं आपकी सेना। इसलिए गोलोक के साम्राज्य का ऐश्वर्य देने के लिए भगवान द्वार खोल के खड़े हैं और वेट कर रहे हैं कब जीव आएगा और हमारे गोलोक के ऐश्वर्य को पूरी तरह स्वीकार करेगा। हमसे अधिक भगवान आतुर हैं अपना हर प्रकार का समृद्धि हमको देने के लिए। तब आगे बलराम जी कहते हैं कि रुक्मिणी, रुक्मी को हम मारेंगे। अब रुक्मी और शिशुपाल बड़ा हताश होकर बैठा है। जरासंध शिशुपाल के आके पास आके बोलता है तू दुखी क्यों है। शिशुपाल ने कहा हार गया इसलिए। जरासंध ने कहा रे मुझे देख 17 बार हारा हूं, हम होंगे कामयाब एक दिन, क्यों चिंता करते हो मुझे देखो। और फिर रुक्मी यहां आए तो रुक्मी को मारने के लिए तैयार थे, रुक्मिणी कहती मत मारो मत मारो, और कृष्ण बलराम और रुक्मिणी के इस मतभेद को देखकर चुप हो जाते हैं, कॉन्ट्रोवर्सी में प्रवेश नहीं करना चाहते। फिर बलराम जी सोचते हैं चलो कोई बात नहीं, और देखिए रुक्मी को एक ऐसा शेविंग मार दिया कि अलग हेयर स्टाइल दे दिया, हिप्पी कट दे दिया। और तत्पश्चात फिर प्रद्युम्न की कथा आती है, श्यामंतक जो मणि है उस कांड के अंतर्गत बताया गया है कि चाहे कृष्ण भगवान क्यों न हो लेकिन इस जगत की गाली खानी पड़ती है, चाहे कितना भी श्रेष्ठ व्यक्ति क्यों न हो द्वेष से हम नहीं बच सकते और हर प्रकार के अफवाहों से हम नहीं बच सकते। और फिर सत्यभामा के साथ कृष्ण का विवाह होता है और फिर कृष्ण धीरे धीरे अलग अलग चुनौतियों पर विजय प्राप्त करके कालिंदी नग्नजीति मित्रविंद इत्यादि से विवाह करते हैं, है ना। और फिर आगे चलकर सब लक्ष्मणा इत्यादि का साथ विवाह करने के बाद मुरा राक्षस और भौमासुर का वध करते हैं कृष्ण। ये सब द्वारका में, अब जो है देखिए वृंदावन में तो केवल हाथ में बांसुरी लेके खेल रहे थे, परित्राणाय साधुनाम वृंदावन में कर दिए, अब विनाशाय च दुष्कृताम हाथ में अस्त्र शस्त्र लिए तो नीचे रखने का नाम ही नहीं, एक के बाद एक शस्त्र चला रहे हैं। और ये भौमासुर को मारने के बाद वहां 16,000 जो रानियां थीं, 16,100 रानियों के साथ उन्होंने विवाह कर लिया, ये बताने के लिए कि सामाजिक दृष्टि से कोई कलंकित क्यों न हो लेकिन मेरा कर्तव्य बनता है कि हर व्यक्ति का मैं उद्धार करूं। तो इसलिए कहते हैं जिसको समाज ने त्याग दिया उसको कृष्ण अपना लेते हैं। और तब यहां पर अदिति जी के जो कुंडल और वरुण जी के छत्री उनको लौटाया, भौमासुर के पास बंदी लोगों को मुक्त किया। और फिर यहां पर कृष्ण अपने रानियों के साथ लीला करते हुए स्वर्ग में गए, क्या लाने पारिजात वृक्ष, और इंद्र के साथ युद्ध किया। फिर कृष्ण रुक्मिणी के साथ प्रणय कलह करते हैं। फिर प्रद्युम्न का जब विवाह चलता है तब उस समय रुक्मी और बलराम जी बैठे हैं और खेलते रहते हैं, और रुक्मी जी बलराम जी जीत जाते हैं, रुक्मी कहते नहीं नहीं तुम नहीं जीते मैं जीता, फिर बलराम जी कुछ बोलते नहीं। फिर एक बार खेल खेलते हैं, फिर रुक्मी बोलता है तुम नहीं जीते मैं जीत गया, तो बलराम जी फिर कुछ नहीं बोलते। तीसरी बार और पैसा लगाते हैं और वो बोलते हैं मैं जीत गया, बलराम जी से रहा नहीं जाता, गदा लेके सीधा दे मारते हैं, वहीं पे समाप्त कर देते हैं। तो तब यहां पर फिर उषा और अनिरुद्ध की कथा आती है, ये सब बड़ी विस्तृत कथा है। और उसके आगे फिर एक एक करके ये सब द्वारका की कथाएं, और फिर अंत में हम देखते हैं कृष्ण पौंड्रक काशीराज और सुदक्षिण को मारते हैं जगन्नाथपुरी में, जो आप लोग गए आप लोग ने सुना भुवनेश्वर में किस तरह भगवान ने शिवजी को स्थान दिया काशीराज के समाप्ति के पश्चात। फिर यहां पर द्विविड गुरिल्ला को बलराम जी मारते हैं, और नारद मुनि कृष्ण के दैनिक कार्यों को देखने के लिए 16,108 रानियों के राजमहल में प्रवेश करते हैं। तो देखते हैं कि कृष्ण न केवल 16,108 रानियों के विवाह करते हैं, सबको संतुष्ट भी रखते हैं। तो ऐसा नहीं कि केवल विवाह कर दिया और सब लोग सोच रहे हैं कृष्ण का हमारे घर पर आने का स्केड्यूल क्या होगा, कृष्ण प्रतिदिन उनके साथ हैं, हर व्यक्ति को उन्होंने इस प्रकार आनंद दिया। और फिर कृष्ण सुधर्मा असेंबली हॉल में आते हैं और वहां पर हर प्रकार के त्रिविध ताप से मुक्त परिस्थिति है। फिर उद्धव जी के राय लेकर कृष्ण भीमसेन को लेकर अर्जुन को लेकर जाते हैं और जरासंध से निवेदन करते हैं कि युद्ध करो। तो जरासंध भीमसेन युद्ध करने के लिए तैयार हो जाता है, युद्ध समान रूप से चलता है। फिर कृष्ण अपने हाथ में घास का तिनका लेकर कहते हैं इसको काटो, इस प्रकार कृष्ण का संकेत पाकर भीमसेन जरासंध के पैर के दो टुकड़े करता है और वो जीत जाते हैं। राजसूय यज्ञ के विषय में कल हमने चर्चा किया और फिर दंतवक्र विदुरत और रोमहर्षण का वध कृष्ण करते हैं और फिर बलराम जी जाकर रासलीला करते हैं वृंदावन में। सुदामा जी को उनकी पत्नी भेजती है कृष्ण को बुलाने, शुश्रुषया परमया पाद संवाहनादि भी पूजितो देव देवेन विप्र देवेन देववत। और कृष्ण सुदामा के भक्ति को देखकर इतने प्रसन्न होते हैं कि कृष्ण अपने आप को सुदामा जी को दे देते हैं। ये जो दृश्य आप देख रहे हो, इस कौन को चलाना है तो इसी तरह हम चला सकते हैं। जब हम एक दूसरे वैष्णवों का, सेवकों का सेवक बनने का प्रयास करें। श्वो भूते विश्व भावे न स्व सुखे ना भी वंदित जगाम स्वालयम तात पथम अनुव्रज नंदित। इसमें वर्णन किया गया है, आप दूसरे भक्तों को सबसे बड़ा अनुपम भेंट क्या दे सकते हो? सस्नेह सम्मान। स्नेह युक्त जब हम सम्मान देंगे, इससे हृदय सबसे अधिक संतुष्ट होता है। ये कृष्ण ने सुदामा को दिया, इससे सुदामा इतने संतुष्ट हुए भूल गए कि पैसा लेने आए थे। और फिर जगाम स्वालयम तात पथम अनुव्रज नंदित, अपने घर जाते हुए सुदामा जी पूरी तरह प्रसन्न थे। तो सुदामा जी को भगवान ने करोड़पति बना दिया। और फिर भगवान कुरुक्षेत्र में गए ब्रजवासियों को मिलने, और कृष्ण के इस राजसी वैभव को देखकर राधा रानी और गोपियां हतोत्साहित हो गईं और मन के रथ में कृष्ण को सवार करके उनको खींच के ले आईं, जिससे कि कृष्ण ब्रज के रूप में प्रकट हो जाएं। वृंदावन गोवर्धन यमुना पुलिनवन सही सब रासाधिक लीला सही ब्रजेर ब्रजजन माता पिता बंधुगण बड़ चित्र के माने पासरीला। महाप्रभु रथ यात्रा में गा रहे हैं राधा रानी के भाव में, हे प्रभु क्या आप वृंदावन को भूल गए? गोवर्धन यमुना जहां पर रासलीला के, से ब्रजेर ब्रजजन ब्रजनों को भूल गए, माता पिता बंधुगण उनको भूल गए, बड़ा चित्र, अरे कितनी विस्मयजनक बात है, के मने पास रीला, आप कैसे इन सभी को भूल सकते हो? तो इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण अपने परिवार के साथ स्नेहमय जीवन बिताते हैं और देवकी माता को उनके सब मृत पुत्रों को पुनर्जीवित करते हैं यमराज जी के घर पर जाकर, ये बताने की यमराज के पास भी मेरी सत्ता चलती है। सारे साक्षात वेद उनकी स्तुतियां करते हैं। शिवजी वृकासुर को आशीर्वाद देते हैं कि जिसके सर पर हाथ रखोगे उसका सर फूटेगा। शिवजी को देखकर, शिवजी के बगल में पार्वती को देखकर वृकासुर पूछते, ये कौन खड़ी है सुंदरी? शिवजी कहते, मेरी पत्नी है। वृकासुर बोलते, मुझे वो चाहिए। शिवजी बोलते, पागल हो गए क्या? तो वृकासुर अपना हाथ आगे करके शिवजी के सर पर रखने भागते हैं। तो शिवजी भागते भागते गए, कृष्ण आकर एक ब्राह्मण का रूप देकर उनको रोकते हैं और कहते हैं कि अपने सर पर रखो यार, शिवजी तो बहुत वरदान देता रहता है, आधा से ज्यादा फेल होता है। तो वृकासुर अपने ही सर पर हाथ रखता है, उसका सर फूट जाता है। इस तरह जब शिवजी विपत्ति में होते हैं उनको कौन बचाता है? कृष्ण। तो दशम स्कंद में बताया गया है, अहम आदिर ही देवानाम, सब देवताओं का स्वामी मैं हूं। इस प्रकार ये आगे यहां लीला करते हुए 11वें स्कंद में हम लोग प्रवेश करते हैं कि यहां पर द्वारका में लीला समाप्त करने जा रहे हैं भगवान श्री कृष्ण, और ऋषि मुनियों का यहाँ पे अभिश्राप होता है क्योंकि सांब को एक पुत्री का वेश धारण करा के वो ले जाते हैं और गर्भवती कन्या के रूप में उनको लेके जाके पूछते हैं कि इनका क्या होगा, पुत्र होगा कि पुत्री। इसको देखकर ऋषि मुनि इतने क्रोधित हो जाते हैं, वो अभिश्राप देते हैं कि ये आपके विनाश का कारण बनेगा। और इसको देखकर वसुदेव जी भयभीत हो जाते हैं कि हमारे परिवार का क्या होगा, और वो नारद मुनि से भागवत धर्म का विस्तृत वर्णन पूछते हैं। और तत्पश्चात निमि महाराज और नव योगेंद्र बीच चर्चाएं यहाँ वर्णन होती हैं। और इस टेबल पे जो दिया गया है, ये प्रश्न और उत्तर जो निमि महाराज और उनके बीच चर्चाएं हुई उसका एक संक्षिप्त वर्णन आया है। और देवतागण भगवान श्री कृष्ण से निवेदन करते हैं कि प्रभो, हमने आपसे निवेदन किया था कि आप अपनी लीला करें, तो जैसे ब्रह्मा जी के साथ देवा देवता जाकर संकीर्तन करके बुलाए थे कि भगवान यहां अपनी लीला प्रसारण करें, लेकिन अब वो कहते हैं प्रभु आपकी लीलाएं पर्याप्त और प्रचुर मात्रा में संपन्न हो गईं, चाहे कितना भी बड़ा फीस्ट हो असीमित समय तक उसको नहीं खाया जा सकता। इसलिए भगवान की लीलाएं परिपूर्ण हैं, संपूर्ण है, श्रेष्ठ है, लेकिन दोष से विहीन सर्वगुण संपन्न पूर्ण पुरुषोत्तम चिदघन आनंदघन ज्ञानघन भगवान श्री कृष्ण के अति मनोरम मनोहर लीलाओं को भी विराम देना पड़ता है। और देवतागण आकर कह रहे हैं प्रभु बस हो गया, अब अपनी लीलाओं को विराम दीजिए। और तब भगवान श्री कृष्ण के समक्ष यहां उद्धव आते हैं और उद्धव समझ जाते हैं कि अब संपूर्ण द्वारका का विनाश निश्चित है, सारे द्वारकावासी नष्ट होने वाले हैं। और उद्धव जी भगवान से प्रार्थना करने लगते हैं, तापत्रेणाभीतस्य घोरे संतप्यमानस्य भवाद्वनीश पश्यामि नान्यत् शरणं तवांग्री द्वंद्वात पत्रात् अमृताभिवर्षात्। तो उद्धव जी को भगवान श्री कृष्ण प्रश्नों का उत्तर देने में कहते हैं किस प्रकार वैराग्य और समभाव रखें, 24 गुरुओं की कथा बताते हैं, मुक्त आत्मा को कैसे पहचाने, वो कहते हैं कर्म ज्ञान और भक्ति और संग से मुक्त आत्मा की पहचान होती है, असली भक्त कौन है, गोपियों का वर्णन करते हैं, कौन सा मार्ग अपनाएं, कहते हैं ज्ञान का अवलंबन करो और फिर शुद्ध सत्व में आओ, ये भौतिक जगत को भोग करने की आवश्यकता क्या है। तो प्रभुपाद भगवान श्री कृष्ण कहते हैं उनको कि जब तक हम इंद्रियों के और इंद्रिय विषय भोगों के साथ हम अपना तालमेल रखेंगे तब तक हम भ्रमित होंगे। जैसे मैंने चार कुमारों को बताया विषयों से अपने मन को अनासक्त करो, किस रूप में आपने कुमारों को ये ज्ञान दिया, हंसावतार के रूप में सांख्य का ज्ञान दिया, सारे अगर मार्ग शक्तिशाली हैं और आवश्यक है तो उनपे श्रेष्ठ कौन है, तो कहते हैं कि भक्ति उनमें सर्वश्रेष्ठ है। और मुक्ति के लोग किस प्रकार आप पर अपना ध्यान लगाएं, अष्टांग योग के माध्यम से कितनी सिद्धियां हैं, 8 प्रमुख और 10 दूसरे, भगवान की शक्तियां क्या है भौतिक और आध्यात्मिक। मैंने ज्ञान भक्ति और अष्टांग योग सब सुना, कर्म योग बताइए, वर्णाश्रम का विस्तृत वर्णन करते हैं, भक्ति ज्ञान विज्ञान और वैराग्य बताइए तो धर्म के विषय में विस्तृत ज्ञान देते हैं, सही और गलत उचित और अनुचित से अनासक्त होकर कैसे हम मुक्त हो सकते हैं। तो भगवान कहते हैं भक्ति का अर्थ है न बहुत अधिक आसक्ति न अनासक्ति, और इसको छोड़कर भगवान श्री कृष्ण की कथा में श्रद्धा रखना आवश्यक है। जब तक कृष्ण कथा में पूर्ण श्रद्धा न हो उचित अनुचित का भेद करना आवश्यक है। फिर उद्धव जी कहते हैं मैं कर्मकांड को समझ गया, अब ज्ञानकांड को समझाओ। तो भगवान कहते हैं इन दोनों में कोई परस्पर विरोधाभास नहीं, पुरुष और प्रकृति में अंतर बताइए, कहते हैं प्रकृति परिवर्तित होता है, पुरुष कभी बदलता नहीं। और भौतिकवादी जन्म लेते हैं और मृत्यु होते हैं, तो कहते हैं जन्म और मृत्यु तो केवल परिभाषा है, जब हम विषय भोगों से आसक्त होंगे तब संसार आरंभ होता है। फिर कहते हैं जब लोग हमें गालियां देते हैं अपमानित होते हैं तो उसको सहन करना बड़ा कठिन है, वो कहते हैं अवंती ब्राह्मण की कथा, नायम जनों में सुख दुख हेतु न देवतात्मा गृह कर्म काले मन परम कारण मामनंती संसार चक्रम परिवर्तयेत्। अगर किसी को लगता है ये व्यक्ति ये काल ये कर्म ये ज्योतिष ये सारे अलग अलग प्रतिद्वंद्वी हमारे दोष के कारण है, समस्या के कारण है, नहीं, हमारे क्लेश का मूल कारण कौन है, मनः परम कारण मामनंति, केवल मन ही हमारे क्लेश का कारण है, ये संसार चक्र में हमको फंसाता है, तो ये अवंती ब्राह्मण की कथा इसमें बताते हैं। और तब जाकर हमको कुसंग से मुक्त होकर सत्संग प्राप्त करना है, कहते हैं क्रिया योग समझाइए, और तब अर्च विग्रह आराधना और संसार कैसे नष्ट करें। वो कहते हैं कि विवेकहीनता के कारण संसार होती है, मिथ्या अभिमान को नष्ट करेंगे तब ज्ञान योग का एक वास्तविक तत्व हम समझ पाएंगे। सबसे आसान मार्ग बताइए, तो कहते हैं सबसे आसान मार्ग भक्ति है। इस प्रकार संपूर्ण उद्धव गीता लगभग 22 अध्याय में चलती है, उसको हमने 2.25 मिनट में समझाया है। यही 11वें स्कंद को हमने पिछले 2 महीने पहले अक्टूबर में या सितंबर में, कब था हम लोग का कथा, अक्टूबर में था, 4 दिन हमने ये 11वां स्कंद किया। वो 4 दिन का सेमिनार को हमने 4 मिनट में कर दिया। तो तब उद्धव जी भगवान का आदेश प्राप्त करके बद्रिकाश्रम चले जाते हैं, बद्रिकाश्रम में सब ऋषि मुनियों को ज्ञान देने, और तब भगवान श्री कृष्ण बैठकर मनन कर रहे हैं वटवृक्ष के नीचे। जरा नाम के एक शिकारी उनके ऊपर एक बाण चलाते हैं, वो बाण कृष्ण के चरणों को स्पर्श करते हैं। हाँ, और तब भगवान श्री कृष्ण सबसे पहले उस जरा को ही भगवत धाम भेजते हैं, और फिर कृष्ण स्वयं चले जाते हैं। और इस प्रकार गुरुसुतम यमलोक नीतम त्वाम चानयत शरणदा परमास्त्र दग्धम। परीक्षित महाराज दुखी होते हैं सुनकर कि कृष्ण का निधन हुआ। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं इनका निधन नहीं हो सकता। मर्त्येन यो गुरुसुतम यमलोक नीतम, अपने गुरु के पुत्रों को मरे हुए अवस्था से यमलोक से जो लेके आए वो कैसे मर सकते हैं? अरे परीक्षित, तुम तो मर गए थे, तुम्हारे माँ के गर्भ में तुम्हारी मृत्यु से आपको जगा के लेके आए, वो कैसे मर सकते हैं? जो शिवजी सारे यमदूतों को प्रलय के बाद नष्ट करते हैं, वो शिवजी को जो पराजित कर देते हैं, वो कैसे मर सकते हैं? जिस शिकारी ने उनको अस्त्र चलाया उसको पहले भगवत धाम भेज दिया, वो कैसे मर सकते हैं? ये तो उनकी लीला थी कलयुग में लोगों के मन में संशय पैदा करने के लिए, इसलिए उन्होंने एक इस तरह का शरीर छोड़ के चले गए, अन्य कोई बात नहीं। तत्पश्चात भगवान श्री कृष्ण जब पुनः भगवत धाम लौटते हैं, सारे देवतागण उनकी स्तुतियां करते हैं। 12वें स्कंद में भूमि गीत, भूमि देवी बताती है कि कैसे लोग मूर्ख हैं, जमीन खरीद कर सोचते हैं मैं मालिक बन गया, नालायक तुम्हारे पहले करोड़ों लोग आकर मुझ पर आक्रमण करके बलात्कार करने का प्रयास किए, उनको मैंने अपने चरणों तले रौंद डाला, तुम किस खेत की मूली हो? इसलिए इस जगत का कोई भी शक्तिशाली व्यक्ति वास्तव में भूमि देवी के सामने कुछ भी नहीं। और यहां पर प्रकृत परीक्षित महाराज के अंतिम प्रश्न पूछते हैं कि आप इतने सारे बड़े बड़े राजाओं की कथा बताएं क्यों? सुखदेव गोस्वामी कहते हैं इस जगत के लोगों को ज्ञान और वैराग्य देने के लिए, क्योंकि इस जगत में केवल 1-2 BHK फ्लैट लेकर आदमी अभिमानी हो जाता है, तो उसको समझना चाहिए बड़े से बड़े राजा नरेश गण भी अंत में शरीर छोड़ के गए और अभी केवल इतिहास के पन्नों में नाम रह गए और कुछ नहीं। इसलिए हमको ऐसे नाम नहीं बनना है, हमको भगवान के नाम को अपनी जिह्वा पर लेना है। और तब जाकर कलयुग का गुण बताते हैं, कलयुग में कैसे लोग, पुरुष लोग बाल बड़ा करके सोचेंगे सुंदर बन गया, और कलयुग में छोटे छोटे कार्यों को लेकर, बातों को लेकर कलह छिड़ जाता है। और तब कहते हैं ये वाला श्लोक, कलेर दोष निधे राजन अस्ति एको महान गुण कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्त संग परम व्रजेत। तत्पश्चात 4 प्रलयों का वर्णन करते हैं। एक है नैमित्तिक प्रलय जो ब्रह्मा जी के दिन के अंत में, प्राकृतिक प्रलय जो ब्रह्मा जी के जीवन काल के अंत में, नित्य प्रलय जो हर क्षण नाश हो रहा है, और लेकिन हमको चाहिए, भक्तों को चाहिए आत्यंतिक प्रलय, अर्थात हमारे मिथ्या अभिमान का नाश। ये आत्यंतिक प्रलय को प्राप्त करने के लिए हम लोग इस्कॉन में आए हैं, ये आत्यंतिक प्रलय हम लोगों की कामना है। वेन द फॉल्स ईगो इज डिस्ट्रॉयड, वेन द जीवास फॉल्स ईगो इज डिस्ट्रॉयड। इसलिए जगत में करोड़ों करोड़ों कंपनियां हैं, करोड़ों करोड़ों संस्थाएं हैं, करोड़ों करोड़ों शैक्षणिक केंद्र हैं, करोड़ों करोड़ों अस्पताल हैं, लेकिन चाहे कितने भी जीव जी पूरे विश्व भर में सुनियोजित संस्थाएं हो, हाउ मेनी वेल ऑर्गेनाइज्ड इंस्टीट्यूशन मे बी देयर, इस्कॉन मे नॉट बी सो वेल ऑर्गेनाइज्ड, बट वॉट इस्कॉन कैन डू नो अदर ऑर्गेनाइजेशन कैन डू, इट गिव सोल्यूशन हाउ टू डिस्ट्रॉय द फॉल्स ईगो। ये मिथ्या अभिमान नष्ट होगा तो केवल इस वैष्णव सत्संग में विनम्रता पूर्वक सेवा करते हुए, कथा कीर्तन करते हुए। इसलिए कभी भी वैष्णव सत्संग में चाहे आपकी योग्यता हो न हो, कुछ समझ पाओ न समझ पाओ, एक बात कभी न करना, निंदा मत करना। जो ये बात समझ गया वो भक्ति के तत्व को समझ गया। क्यों? क्योंकि करोड़ों करोड़ों जन्मों के पश्चात उस मिथ्या अभिमान को नष्ट करने का अगर कोई अवसर है तो वो केवल इस सत्संग में। यह है आत्यंतिक प्रलय। तो इसलिए भागवत के 10 विषयों में एक विषय क्या है? निरोध। निरोध अर्थात प्रलय, 4 प्रकार के प्रलय। और भक्तों के वैष्णव संग में वैष्णव सेवा करके हमारा मिथ्या अभिमान नष्ट होगा। अब महाराज परीक्षित सुखदेव गोस्वामी के सामने बैठे। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, हे परीक्षित, जितना ज्ञान तुमको देना था मैंने दे दिया, अब अंतिम क्षण आ चुका। आप कृपा करके हमारे बताए गए सभी वचनों को चिंतन कीजिए और भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों को मन में धारण कीजिए, क्योंकि कुछ ही क्षणों में जब तक्षक आकर डसेगा, उस डसने के परिणाम स्वरूप जो वेदना आपको होगी उसको सहन करना बड़ा संभव होगा। 42,000 बिच्छुओं के डंक के बराबर मृत्यु के समय वेदना होती है, उस समय भगवान का स्मरण करना बड़ा कठिन है। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, लेकिन परीक्षित, आपको जितना ज्ञान देना था वो सब मैं दे चुका, अब आपको किसी प्रकार से पश्चाताप करने की आवश्यकता नहीं, केवल चिंतन करो और भगवान का स्मरण करो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और देखते ही देखते सुखदेव गोस्वामी ये ज्ञान देकर वहां से निकल गए और परीक्षित महाराज पूरे समाधि स्थित अवस्था में वहां बैठे थे, प्रतीक्षा कर रहे थे निर्भीक रूप से। और तब तक्षक वहां पर आया और तक्षक ने आकर महाराज परीक्षित को डंक लगाया, लेकिन परीक्षित महाराज ने पहले ही अपना शरीर त्याग दिया था। और जब तक महाराज परीक्षित का शरीर भस्मीभूत हुआ तब तक उनकी आत्मा भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों को प्राप्त कर गई थी, क्योंकि उन्होंने बड़े तल्लीनता के साथ एक सप्ताह सुखदेव गोस्वामी के मुखारविंद से भागवत श्रवण किया था। बाकी इस जगत का कोई भी तत्व, कोई भी व्यक्ति, कोई भी वस्तु आपके जीवन काल में सहायता दे न दे, लेकिन मृत्यु के समय 14 लोकों में कोई भी व्यक्ति और वस्तु आपकी सहायता नहीं कर सकता सिवाय भगवान, भक्ति और भागवत। और इस बात को याद करके कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के चरणों में निरंतर कृतज्ञता पूर्वक हमें प्रणाम करना है कि उनकी कृपा से हम इस भागवत के ज्ञान को प्रवेश कर पाए और उनका ज्ञान प्राप्त करके हम कृष्ण का स्मरणम करके अपने मनुष्य जीवन में कृष्ण का चिंतन करते हुए उनके धाम में प्रवेश करें। इन कामनाओं के साथ मैं आयोजकों को, नित्य कृष्ण प्रभु और उनके परिवार को, उनकी बहन को, उनकी पत्नी को, उनके परिवार के सभी सदस्यों को धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने इतने प्रेम से यहाँ राधानाथ महाराज के हृदय के निकट वाले गोवर्धन इको विलेज प्रोजेक्ट में यहाँ कथा आयोजित करने का निश्चय किया। न केवल आप स्वयं अपने सेवा से यहाँ पर योगदान दे रहे हो हर सप्ताह, लेकिन मदन मोहन मंदिर के कंस्ट्रक्शन के लिए नित्य कृष्ण प्रभु परिवार ने बहुत बड़ा एक डोनेशन भी दिया है। और हम सभी भक्तों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।